ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 44 से प्रारंभ करेंगे। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुन् समभ्यर्च दधीन्यमन्थम् तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजुः रज्जु विकर्षाद्भुजकङ्कुलस्रजः चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डल त्रिशत्कपोलारुणकुङ्कुमाननः उद्गायतीनामरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दह्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रित निराश्य तेजेन दिशाम मङ्गलम् भगवत् उदिते सूर्ये नन्दद्वारि व्रजौकशः दृष्ट्वा रथं शातकौम्भौं कस्यायामिति चाब्रुवान् अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीम् कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिः भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनाम् उद्धवोगात् कृतः निकः। श्रीशुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसत् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मितः कोऽयमपि च दर्शनः कुतश्च कस्याचित् वेशभूषणः इति स्म सर्वः परिबव्रुरुत्सुकः तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेणावनतः सुसत्कृताम् सब्रीड हासे क्षण सु नृतादिधि रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः। जानीमस्त्वां जदुपतेः पार्षदं समुपागतम् भर्तेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। समक्ष उद्धव जी का प्रवचन, उनका शोक दूर करने के लिए। लेकिन उद्धव जी के प्रवचन के बाद भी बीच बीच में नंद बाबा बोलने लगते थे, फिर ये बोलते थे, तो शोक दूर नहीं हुआ, शोक और बढ़ता गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं निशा सा ब्रुवतुर व्यतीता, ब्रुवतो हो नंदस्य उद्धवस्य च ब्रुवतो हो, ये बोल रहे थे। जब नंद बाबा बोल लेते थे और बोलने की शक्ति नहीं रहती थी, तब उद्धव जी का प्रवचन चालू होता है। उद्धव जी कुछ कहते थे तो नंद बाबा कुछ नहीं समझते थे, फिर वे बोलने लगते थे। तो वे केवल कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि ऐसे खाता था, ऐसे बोलता था, ऐसे जैसा पहले वर्णन हुआ है उसी की आवृत्ति करते रहते थे। हाँ, उसको मैं कह रहा हूं। तो इस तरह दोनों के बोलते बोलते सार निशा व्यतीता, रात बीत गई बात नहीं बीती, रात बीत गई। और दोनों के विषय में एक ही बात, एगुड़े बतिया सारी रतिया। रात भर कृष्ण कथा हो रही, श्रोता कोई नहीं था। हाँ, उद्धव जी श्रोता बन जाते थे, नंद बाबा सुनते नहीं थे। वो तो कृष्ण के ध्यान में थे, मगन में थे, उनके रूप उनके गुण लीला के स्मरण में। तो जिम ही बंद करते थे वही नंद बाबा बोलना चालू करते से आदर करते थे कि कुछ बोल रहा है, कृष्ण का सखा है, आया है, हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि रात ही बीत गई, दोनों की बात नहीं बीती। निशा माने बात। उद्धव जी जो बोल रहे थे उसमें बाद में लगे कहने कि उनका कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है, न पराया है, न कोई अपना है, न कोई उत्तम है, न अधम है, न कोई असम है। सभी सम है, असम। इसमें 14 बार न का प्रयोग किया गया है उद्धव जी के प्रवचन में। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मियो न परश्चापी, न देहो जन्म एव च, न चास्य कर्म वालो के संसम मिश्र जो निशु। इस तरह से न न करे, नहीं 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 नहीं, कृष्ण का जन्म नहीं है। तो प्रश्न होगा तब जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? और भगवान स्वयं ही उद्धव जी से बोले कि हमारे माता पिता को जाकर के सुख दीजिए। तो माता पिता भगवान के नहीं है तो ये कैसे बोले कि हमारे माता पिता? उद्धव जी कहते हैं न माता न पिता तस्य। वास्तव में उद्धव जी चाहते थे नंद जसोदा का शोक दूर करना, इसलिए भगवान के इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यदि भगवान के जन्म कर्म आदि की दिव्यता बताई जाए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन निषेध करने में वास्तव में प्राकृतत्व का निषेध किया जा रहा है। भगवान का जन्म है लेकिन लौकिक जन्म नहीं है। जैसे यहां बच्चे गर्भ में पलते हैं और पिता का धातु क्षरण होता है और मां के गर्भ में बच्चा बनता है, उसका शरीर बनता है, इस तरह से इसको जन्म कहते हैं। और कर्म बस जन्म होता है, पहले का कर्म होता है उसके अनुसार किसको सियार में जन्म मिलेगा, किसी को मनुष्य में जन्म मिलेगा, किसी को गाय में, किसी को भैंस में, किसी को वृक्ष में, किसी को केवल चींटी में, कीट पतंग में, सब अपने अपने कर्म से बाध्य हैं। लेकिन भगवान जो जन्म लेते हैं किसी कर्म द्वारा बाध्य नहीं है, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। और कोई भी जीव अपनी इच्छा से प्रकट नहीं होता है, अपनी इच्छा से प्रकट होना होता है तो सबसे धनी परिवार में जन्म लेता है और मनुष्य का ही शरीर पाता है, लेकिन जीव परवश है। इसीलिए निषेध किया जाता है भगवान का जन्म नहीं है। जन्म कहने पर लोग ऐसा ही जन्म समझेंगे और पिता कहने पर ये ना समझ लोग समझेंगे कि हाँ पिता के बीज से कृष्ण का देह बना है, जन्म हुआ है। इसके निगेशन के लिए उद्धव जी करें, नहीं उनका उनकी कोई मां नहीं है, उनका कोई पिता नहीं है, न उनकी कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है। इसी बात को फिर पॉजिटिव में बोलेंगे आगे। तो इतना संकेत करना जरूरी था। सदसल मिश्र कभी रजोगुणी तमोगुणी और सात्विक योनियों में भगवान प्रकट होते हैं, पर भगवान का प्राकट्य, भगवान का जन्म या भगवान की मां, भगवान का भाई, भगवान के पिता, ये सब भगवान के समान ही दिव्य हैं, प्राकृत नहीं है, मैट्रियल नहीं है। तो मैट्रियल भावना का निरसन करने के लिए ये बातें कही गई हैं। आगे वे कहते हैं, युवयो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि ही सर्वेशाम आत्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वर। इसका अन्वय कई तरह से होता है। पहला यह है कि युवयो एव, आप दोनों के ही अयम आत्मज न, आप दोनों के केवल ये पुत्र नहीं है कृष्ण, बल्कि सर्वेशाम आत्मज, ये सबके पुत्र हैं। सर्वेशाम, सर्वेशाम से तात्पर्य ऐसे इमीडिएट होगा कि रोहिणी जी के, देवकी जी के, वसुदेव जी के भी वे पुत्र हैं। सर्वेशाम, सर्वेशम का यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी के भी पुत्र हैं कृष्ण। सर्वेशम का अर्थ है कि जो उनको पुत्र भाव से भजते हैं उन सबके पुत्र हैं। जे जथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथा यो भजामि। सर्वेशम ज्वये रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि, सबके पुत्र हैं। तो इसका मतलब कि जितने जीव हैं उतने माता पिता हुए भगवान के, उनसे जन्म हुए। किसी भी व्यक्ति को ये अवसर है कि वो भगवान कृष्ण को अपना पुत्र बना सकता है, किसी को भी। यह रिजर्व कोटा नहीं है केवल देवकी वसुदेव जी के लिए, कोई भी व्यक्ति इस भाव से, वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करके और उनको अपना पुत्र पा सकता है। जैसे महाराज दशरथ पाए, या कश्यप जी, माता कौशल्या और माता अदिति, और कई माता देवहूति भगवान को अपने पुत्र रूप में पाई, और नाभि महाराज भगवान ऋषभ देव को अपने पुत्र रूप में पाए। इस तरह से देखा जाता है। और जयंती उनकी पत्नी का नाम था नाभि महाराज, तो इसीलिए नौ जगेश्वरों को जायंते ये कहा गया है। जयंती के पुत्र नव कुमार, नव जोगेश्वर। तो इस प्रकार भगवान किसी के भी पुत्र हो सकते हैं, हैं ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखाः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान सब कुछ है जीव के लिए, केवल इस तथ्य को, इस सत्य को पहचानने की जरूरत है। भगवान की कथाएं जब सुनने को मिलती हैं तब इस प्रकार का भाव उदित होता है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि युवयो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि। इसका एक अर्थ हुआ कि भगवान हरि ही श्री कृष्ण युवयो रेव आत्मज न सर्वेशा। एक अर्थ यह भी होगा, वे आपके पुत्र हैं और अवश्य आपके प्रेम से स्नेह से आकृष्ट होकर के आएंगे और शीघ्र आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। नंद बाबा ने बीच में कह दिया कि वसुदेव जी भी अपना पुत्र मानते हैं और ये भी उनको पिता जैसा मानता है, तो उनका स्नेह छोड़ करके कैसे आएगा। तब कहते नहीं नहीं, आपका ही पुत्र है दोनों, ये हरि श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं, सबके नहीं है। सिर्फ कोई मान ले बस हो जाए। समझाने की एक कला है, परम दक्ष है ना, भगवान के मंत्री हैं, मित्र हैं, बोलने में बहुत पटु हैं। पर सारी बुद्धि लगा दिए कि नंद बाबा का शोक दूर हो जाए, पर नहीं, शोक दूर नहीं, बढ़ता गया। सबके पुत्र हैं और सबके आत्मा हैं, परम प्रिय हैं श्री कृष्ण, और पिता हैं, माता हैं, स ईश्वर, और ये परम ईश्वर है भगवान। परम ईश्वर हैं, सबके माता हैं, सबके पिता हैं और सबके बेटा भी हैं। सर्वेशम, ये सब जगह लगेगा, सर्वेशम आत्मा, सर्वेशम पिता, सर्वेशम माता और सर्वेशम ईश्वर। ब्रह्मा शिव आदि के भी नियामक हैं, सभी उनके आत्मा, सब सबके पिता हैं, सबकी माता हैं। ये बात तो समझ में आ जाती है कि भगवान सबकी माँ हैं, सबके पिता हैं। पिता का अर्थ है पालन करने वाला, पालन करते हैं सबका, और माता के समान स्नेह करते हैं, इसलिए उनको माता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को या शिव जी को और सभी जीवों को अपने पेट से प्रसव किया है। पिता पालन करता है तो इस तरह से पिता की तरह सबका पालन करते हैं। सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महज्जोनिर् अहम् बीजप्रदोपिता। भगवान कहते हैं जितने भी जोनियां हैं, शरीर हैं, और उसमें जितने जीव हैं, सबकी मां है प्रकृति और मैं पिता हूं। और प्रकृति भी कृष्ण ही है, इसलिए भगवान ही माता हुए, कृष्ण ही माता है। पर हुबहु ऐसे माता नहीं है कि अब उधर में ढोवें सभी जीवों को, काम करना कठिन हो जाए। केवल संकल्प मात्र से सबको पैदा करते हैं, स्नेह करते हैं और पिता की तरह पालन करते हैं। इसके साथ परम ईश्वर है, परम कंट्रोलर है। इस तरह से नंद बाबा को समझा रहे थे उद्धव जी, और बाबा आने जाने की बात करना ही बेकार है, वे कहां नहीं है कि आएंगे, वो तो यहीं है और आप साफ देख रहे हैं उनको, पर आपका भ्रम है, आप पहचान नहीं पा रहे। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्थाष्णु चरिष्णु महदल्पकम च बिना च्युताद वस्तु तराम नवाच्यम सएव सर्वम परमार्थ भूत। जो भी वस्तुएं व्यक्ति देखता है उसको दृष्ट कहते हैं, और जो सुनता है दृष्टम श्रुतम, यहां तक कि भूत जो बीत गई हैं वस्तुएं जो हैं इस समय और आगे होंगी, चाहे वो स्थावर हो या चरिष्णु हो, अचर हो, चर हो, महद हो, बड़ी वस्तु हो या अल्पकम च छोटी वस्तु हो, अच्युत के बिना, श्री कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं है, अच्युत ही इन सब वस्तुओं के रूप में है। तो अच्युत उद्धव जी कह रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि किसी भी काल में, किसी भी देश में और किसी भी वस्तु के रूप में वे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि श्री कृष्ण से संबंध टूट जाए इन वस्तुओं का, वही प्रकट। देखी हुई जो वस्तु है और सुनी हुई वस्तु, बीती हुई वस्तु, भविष्य में होने वाली और इस समय वर्तमान, अचर वस्तु और चर वस्तु, बड़ी वस्तु या छोटी, अच्युताद बिना कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तव में सारा जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है, उस दृष्टि से सब में भगवान है और परमात्मा के रूप में सब में विद्यमान है। तराम नवाच्यम, किसी वस्तु को कृष्ण के बिना वस्तु कहा ही नहीं जा सकता है। तराम नितराम, किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। किस वस्तु को कहा जाए कि वो कृष्ण से अलग है, कृष्ण की किसी न किसी शक्ति का प्रकाशन है, कृष्ण के बिना इसकी सत्ता रह ही नहीं सकती। जैसे सूर्य है तो सूर्य ही किरण के रूप में है, सूर्य के बिना किरण की सत्ता नहीं है। यदि कोई ये व्यक्ति सोचे कि सूर्य डूब रहा हो तो ऐसा किया जाए कि सूर्य की किरणों को यहीं पर काट करके रख लिया जाए। सारी दुनिया में लोग कोई उपाय करें, कैंची से, छेदी से, जैसे तैसे काटे, आरी से, किरणों को काट करके रख लिया जाए, जरूरत है, प्रकाश की जरूरत। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा संबंध है कि सूर्य जाएगा और किरणें चली जाएंगी, आप दूर नहीं कर सकते किरणों को कभी। तो भगवान का संबंध सभी वस्तुओं से और तीनों काल में है, छोटी बड़ी या देवता दानव मनुष्य सब सब भगवान के ही अंश हैं। जैसे किरण है सूर्य का, ऐसे किरण स्थानीय जीव है भगवान सूर्य का। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण की उपमा सूर्य से दी भी जाती है। जैसे किरणों का संबंध सूर्य से अभिन्न है, कभी उसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे देखी हुई सुनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, होंगी, हैं, हो चुकी हैं, सबका संबंध कृष्ण से है। सैव सर्वम परमार्थ भूत, किसी वस्तु वाच्य का कहा, वाच्य का अर्थ यह है कि कृष्ण के बिना किसी वस्तु को वस्तु नहीं कहा जा सकता, अनिर्वाच्य है, वाणी से निरूपण नहीं हो सकता। सैव सर्वम परमार्थ भूत, परम अर्थ, परम सत्ता वही है, श्री कृष्ण ही है। अतः आपके हृदय में भी कृष्ण है और बाहर भी जितनी वस्तुएं हैं उनके रूप में कृष्ण है, आपके मन में कृष्ण है, आपकी आंखों में कृष्ण है, आपके कान में कृष्ण है, सब जगह कृष्ण है। कृष्ण के लिए आप इतना क्यों विकल होते हैं? यह तो अज्ञान है ना बाबा। इस तरह से सोचना कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कोई कुछ है ही नहीं। इस तरह से उद्धव जी बोल रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं निशासा ब्रुवतोर व्यतीता। दोनों के बोलते बोलते वो रात बीत गई। सा निशा व्यतीता न तु तेषां प्रवचनम व्यतीतम। उनके उनकी बोली बंद नहीं, बोलते रहे। श्री कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण है। नंद बाबा तो मस्त थे ही, मस्त नहीं कहना, विह्वल थे, बोल रहे थे कृष्ण के गुण। हरे कृष्ण संगीत माधव, सो रहे हैं ना? अरे कंबल हटा दीजिए और देखिए, समाधि में कथा नहीं सुननी चाहिए। समाधि छोड़ करके लोग सुनते हैं कथा। कथा सुनहि तजि ध्यान, रामायण में लिखा गया है। सनकादि ऋषि आदि भी ध्यान छोड़ करके कथा सुनते हैं। यहां पर ज्यादा लोग ध्यान करने लगते हैं। बस इतना ही कह करके छोड़ देता हूं, नहीं तो खड़ा करा देता है। यही कृपा है। इनके उदाहरण से और लोग भी सावधान हो जाएंगे, खास करके जो भक्त नामधारी हैं वे। इसको नहीं माफ किया जा सकता कि कथा में आकर के कोई सो गए। सुनने के लिए आए ना, ये सोने का समय है। नाश्ता देने वाले भी बहुत बेवकूफी कर रहे हैं। ये कोई 8 बजे कोई प्रसाद खाया जाता है, कथा के बाद देना चाहिए। वास्तव में एक अपराध है प्रसाद देना कथा से पहले। जिस काम के लिए व्यक्ति आया है उसी पर आघात किया जा रहा है। कल से नाश्ता नहीं होगा, कल से आस्था होगा। हाँ, आस्था होगा तो दोपहर का भोजन। देखिए, रात में भी उद्धव जी नहीं सोए, नंद बाबा नहीं सोए, और हम लोग दिन में सो रहे हैं। खड़ी रात बीत गई। कृष्ण में परम रस है तो उनकी बात करने में दोनों की रात बीत गई। एवं ब्रुवत, एवं निशा सा ब्रुवतोर बेते। सा निशा, वह सा का अर्थ है कि वह लंबी रात भी, लंबी रात थी। या सा निशा, सा का अर्थ है दोनों के संलाप संबंधिनी निशा। जिस रात में उद्धव जी और नंद बाबा संलाप कर रहे थे, संलाप, उद्धव जी भी संलाप ही कर रहे थे। उनका उद्देश्य था नंद बाबा का शोक दूर करना, तो चाहे उसके लिए कुछ अटपटांग बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, वो बोल रहे थे, तो संलाप ही कहा जाएगा उसको। और नंद बाबा तो संलाप कर ही रहे थे श्री कृष्ण के बारे में हमेशा बोलना। नंद बाबा को समझाने के लिए कहा जाए कि बाबा, अरे वो ईश्वर हैं, उनका कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, तो संलाप ही हुआ ना। एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रलाप हुआ, कुछ बेकार वार्ता है। लेकिन उद्धव जी नंद बाबा को समझाने आए थे, पर नंद बाबा समझे नहीं, बिल्कुल नहीं समझे। जो भी बोलते थे संस्कृत, तो नंद बाबा समझते ही नहीं थे। वो तो कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे थे। मेरा बेटा ऐसे खाता था, ऐसे रुचता था, मैं बहुत गलती किया, केवल गाय चरवाता था, उससे क्या करें, वो मानता ही नहीं था, जंगल में चला जाता था। इस तरह से बोलते रहते थे। उस दिन जा करके काली दह में कूद गया, क्यों, भगवान की बहुत बड़ी दया थी कि उस सांप से बच गया। तो अब पूरा काली दह की ये हो रहा, ये होता था, ऐसे होता था, कृष्ण को ग्रस्त कर लिया था, कृष्ण निश्चेष्ट था। उद्धव जी क्या समझा रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं। गिरिराज जी को उठा लिया भगवान की दया से, ये गुरु जी का आशीर्वाद है, गर्गाचार्य के आशीर्वाद से गिरिराज उठा लिया। इतनी वर्षा हुई उद्धव जी, इतनी वर्षा हुई, लेकिन हम सब लोग बिल्कुल आनंद से गिरिराज जी के नीचे थे और अब बीच बीच में भी बोलते थे। गर्गाचार्य ने कहा था कि ये नारायण के समान गुणों में है, तो इसका अर्थ समझ में बिल्कुल नहीं आता। नारायण भगवान इस तरह से चोरी करेंगे माखन की, हमको समझ में नहीं बात आती है। गर्गाचार्य ने क्या कहा, ये कहा कि पहले कभी वसुदेव जी के यहां जन्म लिया था, तो ये भी नहीं बताया कि कितना जन्म पहले। तो बड़ा मैं फेर में रहता हूं। एनी हाउ कृष्ण का वर्णन आ रहा है, शोक बढ़ता जा रहा है। उद्धव जी भी अवसर पाकर फिर बोलते थे, भगवान के सखा है, भगवान के समान समझाने में प्रवीण है, लेकिन ऐसा महाविद्वान भी युक्ति से किसी भी तरह से नंद बाबा को संतोना नहीं दे पाया। इसी पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों बोल रहे थे, बीच बीच में उद्धव जी बोल रहे थे, फिर नंद बाबा प्रलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। यदि अब आएगा तो गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगा। हमको अनुमान है कि जसोदा ने जो उखल में बांध दिया, यही याद करके यहां आना नहीं चाहता है। बीच बीच में ऐसी बात बोला करते थे। रात बीत गई, जब लगभग 4 बज गया, भोर हो गया, तब श्री गोपी जन उठी। गोप्य समुत्थाय, गोपियां उठी, उत्थाय सम्यक उत्थाय, तो निरंतर कृष्ण का स्मरण हो रहा था, प्रियतम श्याम सुंदर का स्मरण था, उन्हीं का स्मरण करती रहती थी, सपने में भी उन्हीं को देखती थी, तभी उठी। समुत्थाय का अर्थ है सम्यक उठ करके, कि उठ करके उन्होंने आचमन किया, मुख धोया अच्छा से, और निरुक्त दीपान दीपक जलाया, दीपक जला करके देहली आदि की पूजा किया। सब स्थान में कोई न कोई देवता रहते हैं, घर में भीतर बाहर आदि, तो वास्तुन समभ्यर्च्य, वास्तु की पूजा किया, देहली आदि की, श्रीधर स्वामी जी देखें देहली आदि की पूजा की। और इसके बाद दधीनी अमंथन, दही मथने लगे। दही मथना गोपियों के लिए तो जाति कर्म था, गोप लोग गाय चराते थे, पालते थे, पोसते थे, और दूध घर में आ जाता है तो इसके बाद उसको गर्म करना, उसमें जोरन देना, दही जमाना, दही को मथना, ये काम गोपियों का होता है। तो अपने जाति के अनुसार जो काम था वे कर रही थी, अथवा श्री कृष्ण के आवेश में थी कि हम नया नवनीत निकालेंगे, माखन निकालेंगे, तो श्याम सुंदर इसको बहुत पसंद करते हैं। उनको उस महाविरह में भी ये ध्यान यही स्फुरणा होती थी कि श्याम सुंदर कभी भी आकर के दही मांगेंगे, माखन मांगेंगे, यह याद करके, अथवा उनको भेजने के लिए। प्रतिदिन ऐसा होता था कि आज मथुरा में माखन भेजना है, ये करना है, वो करना है, यही आवेश रहता था हमेशा। इसके लिए दही मथ रही थी, और दही मथने मथना उनके लिए परम आनंद की बात थी, क्योंकि वही अवसर था जब श्री कृष्ण का खुलम खुला गान करती थी, गीत गाती थी, दही मथते समय गीत गाती थी, तो गान ही परम लाभ था उसमें, दही इसलिए मथ रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी दही मथती हुई गोपियों का वर्णन कर रहे हैं, कितनी सुंदर लगती थी। तादीप दीप्तैर मणिभीर बिरेजु, दीप दीप्तै मणिभीर, जब दीपक घर में जल रहा था तो उससे गोपियों के जो गहने थे वो चमक रहे थे सभी। मंगला आरती में भगवान के मंदिर में बहुत प्रकाश नहीं किया जाता है, उनके पास जो दीपक रहता है उसको प्रकाशित किया जाता है, तो उस समय भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। थोड़े थोड़े प्रकाश में भगवान का मुख दिखाई पड़ता है, आभूषण दिखाई पड़ता है, तो श्री गोपी जन भी दीपक के ज्वाला से, उसकी उज्ज्वलता से, जो गहने पहने थे वो गहने सब चमक रहे थे, तो उन गहनों के कारण श्री गोपियां बहुत सुंदर लग रहे थे। वी रेजु विशेषण रेजु राजती थी, और भी कारण था उनके विशेष रूप से विराजने का, रज्जु विकर्षक भुजकम कड़ा स्रज, हाथ से दधिमंथन का लज्जु पकड़ पकड़ करके खींच रहे थे। इसमें बहुत परिश्रम होता है, दही मथना साधारण काम नहीं है, दही मथने में दही को मथानी से हटाना पड़ता है, बार बार चलाना पड़ता है, तो गोपियां रस्सी चला रही हैं और उनके हाथों में कंकड़ कलाई में जो चूड़ियां हैं वो बज रही हैं। कंकड़ स्रजा, स्रक का अर्थ है माला श्रेणी, कंकड़ माने कंकड़ चूड़ी का मतलब ये शीशा की चूड़ी नहीं, ये प्लास्टिक की चूड़ी नहीं, सोने की चूड़ियां और भी चूड़ियां थी, तो वो झुनझुन झुनझुन बोल रहे थे। और चलन नितंब स्तनहार कुंडला, जो मस्ती थी तो उनका शरीर हिलता था, तो सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं भगवान की प्रेयसियों का, श्री गोपांगनाओं का, उस समय उनके नितंब हिल रहे थे, स्तन हिल रहे थे, हार हिल रहे थे और कानों में कुंडल हिल रहे थे। चलत करते हुए हिल रहे थे, चलन नितंब स्तन हार कुंडल, और कुंडल के कारण त्विषत तु ईषत कपोला ऋण कंकुमान, कुंडल चमक रहे थे इसके चलते त्रिशत का गोपियों के गाल बहुत सुंदर लग रहे थे, कपोला ऋण, और दही मथने से थोड़ा थोड़ा परिश्रम हुआ था, तो परिश्रम करने से मुख लाल हो जाता है ऐसे भी, तो गोपियों के आनंद अर्थात मुख अरुणिमा से युक्त थे। कुमकुम आनना है, और कुमकुम लगाई थी अपने मुख पर, इससे उनका मुख बड़ा सुंदर लग रहा था, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, उद्गायती नाम, और बहुत उच्च स्वर से, मधुर स्वर से, उच्च का अर्थ है मधुर स्वर, उद्गायती नाम मतलब उच्च स्वर से, मधुर स्वर से गा रही थी। किसके विषय में गा रही थी? अरविंद लोचनम, कमल नयन भगवान के विषय में गा रहे थे। श्री कृष्ण को कमल नयन कहते हैं, आंखें बड़ी सुंदर हैं कमल के समान, कमल की सुंदरता और कमल से शीतलता प्राप्त होती है और उसमें सुगंध होता है, इस भाव का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वे गा रहे थे कमल लोचन को, कमल नयन को। इसका अर्थ है कि सौंदर्य प्रधान गीत था, गा रहे थे तो कितना श्याम सुंदर सुंदर है, इसी का गान कर रहे थे। ये गान प्रधान था, और भी लीलाएं गा रहे थे, लेकिन अरविंद लोचन कह करके सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि जिनकी आंखें अरविंद अर्थात कमल के समान हैं, उनका गान कर रहे हैं। इसे सौंदर्य प्रधान गान सूचित होता है, भगवान की सुंदरता को गा रहे थे। और जो कंकर थे हाथ में, वे करताल का काम कर रहे थे ध्यान से, और ये गा रही थी सुंदर उच्च स्वर से गा रहे थे। कई घरों में, लगभग सभी घरों में गान चल रहा था, तो गोपियों का वो मिलित स्वर पूरे स्वर्ग तक फैल रहा था, स्वर्ग तक जा रहा था, देवता भी सुन रहे थे उसको। दिवम अस्पृशद ध्वनि, दिवम का अर्थ है देवताओं का लोक, आकाश, आकाश में रहने वाले देवता सब सुन रहे थे। ब्रजांगनानाम, और गोपियों का गीत, वैसे ब्रज की गोपियां स्वतः ही सबसे अच्छा गाती हैं, विषय भी और कंठ भी, स्वर भी, राग सब श्रेष्ठ है उनका। विषय तो अरविंद लोचन है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में गाती हैं, और कंठ बहुत सुंदर है, भगवान की प्रेयसियां हैं, तो भगवान के समान ही श्रेष्ठ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ब्रजांगना नाम कह रहे हैं, ब्रज की अंगनाएं, ब्रज की नारियां गा रही हैं। दधनष्ट निर्मंथन शब्द मिश्रित, तो गोपियों का गान मुख्य है, और उसके साथ साथ देने वाला बाजा क्या है? दधनष्ट निर्मंथन शब्द मिश्रित, और दही के मथने का जो शब्द है घरर घरर, और जो गा रहे हैं तो उसी राग में वो मच रही हैं। अलग से ढोलक की जरूरत नहीं है, दही मथने का जो शब्द है वही वाद्य का काम कर रहा है, और कंकड़ जो हाथ में है यही करताल का काम कर रहा है, करधनी कमर में जो बांधी है इसमें भी कुछ शब्द निकल रहा है। तो इन शब्दों के साथ गोपियों का गान चल रहा था, दही मथने का शब्द, ये सब मिल करके निरस्यते जन दिशाम मंगलम, ये भगवान कृष्ण का यह गान कीर्तन स्वर्ग तक जा रहा था, और दसों दिशाओं का अमंगल दूर कर रहा था। अमंगल इस जीवन में जो दुख है, और परलोक में जो दुख है, और सबसे भारी अमंगल है अन्य वासना, श्री कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण सेवा को छोड़कर के जो अन्य वासना है, इसको अमंगल कहते हैं। गोपियों का गीत सुनने पर दसों दिशा में जितने भी जीव थे, मनुष्य देवता आदि, इनकी वासना दूर हो रही थी, गोपियों के गीत का प्रभाव था। आप इससे समझ सकते, जिनके गीत का प्रभाव ऐसा है कि सामान्य व्यक्ति की अविद्या खत्म हो रही है, कर्म वासना खत्म हो रही है, उन गोपियों में कैसे कर्म वासना रह सकती है जिनके गीत का है प्रभाव। वास्तव में गायक की चेतना पर भी गीत का प्रभाव पड़ता है, केवल गान कला जानने से ही गीत का आनंद नहीं आता है, जो गा रहा है उसका वो अर्थ समझता हो और उसकी उसमें रुचि हो तब उस गीत का आनंद आता है। कोई आयोजन करके गोपियां नहीं गा रही थी, प्रतिदिन का दैनिक कर्म था उनका, दैनिक कर्म दही मथने का, और वह गीत दसों दिशाओं जिन दिशाओं अमंगलम, दिशा मतलब दसों दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था, अर्थात दसों दिशा में जितने भी जीव थे उस गीत को सुन करके कृष्ण भावना भावित होते थे, भगवान कृष्ण में प्रेम बहता था। भगवान के भक्ति के अलावा जो भी है अमंगल है, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल अभिषेकांड, ये काम धंधा करना अथवा सन्यासी होकर के काशी में जाकर के रमना या हरिद्वार में रहना, ये केवल विष का बर्तन है। चाहे घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति हो चाहे विरक्त हो, दोनों बेकार है कृष्ण भक्ति के बिना। ये कर्मकांड से तात्पर्य है यज्ञ आदि करना है, लेकिन ये भी कर्मकांड ही हुआ ना। आदमी अपने जीने के लिए देह के लिए काम करता है, परिवार के लिए काम करता है, पर कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो ये केवल विषेर भांड है, विष का बर्तन है। घर गृहस्थी ये विष का बर्तन है, जहर है सब, जानिया सुनिया विष खाएंगे। मनुष्य शरीर पा करके भी भगवान का व्यक्ति भजन नहीं करता है, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाएंगे। विष खा रहा है व्यक्ति और जलन का अनुभव भी होता है। कोई समाचार पूछे तो आदमी कहे क्या करे, मर गए, कोई सुख नहीं मिला, न बच्चा हमारे कंट्रोल में है और न पत्नी बात मानती है, फिर भी इन्हीं लोगों के लिए मर रहा है, तो यही विष खाना है ना। जलन का अनुभव हो रहा है और स्वयं भी जानिया, और दूसरे लोग कहते भी हैं कि जहर है जहर है विष है विष है, फिर भी उठाकर पी लिया, जानिया सुनिया विष खाएं। जो स्वयं व्यक्ति जानता है कि इसमें दुख है और दूसरे लोग भी कहते रहते हैं, साधु महात्मा शास्त्र आदि कहते हैं कि दुख है दुख भी, जानिया सुनिया विष खाएगा, जानता था और सुना भी, लोग मना कर रहे थे जहर है जहर है जहर की शीशी है, लेकिन उठाकर पी लिया, जानता हूं कि जहर है और दूसरे लोग भी कह रहे हैं लेकिन फिर भी पी लिया। ये बात सत्य है कि नहीं, सबके लिए सत्य है, जानिया सुनिया विष खाएंगे। तो करना क्या है, क्या करना चाहिए, विष न पीकर करना क्या चाहिए। ब्रजेन्द्र नंदन जयी सची सुत हैला से बलराम हैला निताई। जो ब्रजेन्द्र नंदन है, ब्रजेन्द्र श्री नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, वही निमाई हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और बलराम हैला निताई, और श्री बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, निताई के रूप में। तो ये बहुत बड़ा धन लाए, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल के निताय। गोलोक का धन लाए, वह क्या, हरि नाम संकीर्तन, श्रीकृष्ण नाम का संकीर्तन श्रीकृष्ण लाए गोलोक से। ये जो शब्द है भगवान के का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये इस संसार का शब्द नहीं है, इस जगत का शब्द नहीं है, प्राकृत जगत का, ये गोलोक का चिन्मय शब्द है जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु लाए संसार में। गोलोक का शब्द है, शब्द भी भिन्न भिन्न जगह का होता है। जैसे रेडियो में हम लोग सुनते हैं तो शब्द यहां का नहीं रहता है, सुनता है आदमी यहां बैठकर, मान लीजिए खड़िया में सुन रहा है कोई रेडियो, तो यहीं का शब्द नहीं है, हो सकता है वो दिल्ली का शब्द हो या पटना का शब्द हो, बीबीसी लंदन का शब्द हो, है ना? ऐसे ही हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं इस भगवान के नाम को, लेकिन ये महामंत्र या भगवान का कोई भी नाम ये गोलोक से उतरा है, यहां का शब्द नहीं है। और इसलिए भगवान यह जगत में लाए कि इसके सहारे, इसका आश्रय लेकर के जीव गोलोक चला जाएगा, इसीलिए यहां लाए। लेकिन इतनी कृपा, एतादृशी तो कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिद्रस्मिहा जनिना अनुराग, भगवान की ऐसी कृपा लाए गोलोक से, लेकिन रति ना जन्मिला के नेता। बहुत दुख की बात है कि भगवान के कीर्तन में, जप में हमारी रुचि नहीं हुई, ये दुख की बात। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रति ना जन्मिला के नेता। इतना सरल साधन, ये तो एलिवेटर से, लिफ्ट से भी ज्यादा सुलभ है। लिफ्ट भी इतना तेज गति से जाए तो उसमें भी आदमी उब जाएगा गोलोक पहुंचते पहुंचते, है ना? उसमें परिश्रम है, एक तो बिजली चाहिए, करंट चाहिए, अगर लिफ्ट जा रहा है बीच में करंट चला गया तो फिर। लेकिन ये नाम ऐसा है डायरेक्ट भेजता, तत्काल भेजता है, बहुत फास्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपीजनों का वह शब्द उनके मुख से निकला हुआ सभी दिशाओं का, दिग्वर्ती जनों का अमंगल दूर कर रहा है। भगवान के कीर्तन को यदि कोई सुनता है तो उसका अमंगल दूर होता है, उसकी वासनाएं मिटती हैं। वासनाएं ही दुख की जड़ है, अनेक कामना, भोगों की कामना जो है यही दुख का मूल है। तो सबका दुख दूर हो रहा था। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखे हैं सवासनम, वासना के साथ सारा बीमारी दुख का शोक दूर हो रहा था। ये प्रभाव था उनके गीत का। वे तो सहज गा रही थी, उनका चित्त अरविंद लोचन में आसक्त था तो उन्हीं के विषय में बोलती थी, गाती थी। भोर में दही मस्ते समय भी वही गा रही, सब समय गाती थी, लेकिन खास करके दही मस्ते समय एक अवसर होता था गाने का, गाती थी। और एक बात और भी, काम छोड़ करके नहीं गाती थी, काम के समय भी गाती थी। यदि किसी को समय नहीं है कि भाई काम धंधा छोड़ करके गावे, तो काम करते समय गाना चाहिए। अपना अपना काम है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देह के लिए काम करना है, और वो नहीं छूट रहा है, तो जहां है वहीं से पुकारिए भगवान को, जहां है वहीं से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारी भारी विपत्ति के समय में भी भजन किया गया है। द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा था दुशासन, अब उनको कीर्तन करने का दूसरा अवसर नहीं था कृष्ण को बुलाने का, तो उसी दशा में वो बुलाने लगे, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, जल्दी आइए। कृष्ण को कह दिया द्वारकावासी, तो बाद में द्रौपदी ने पूछा था भगवान से कि आप हमारे साड़ी को बढ़ाए, वस्त्र को बढ़ाए, तो देर करके क्यों आए? तो भगवान विनोद में कहते हैं, कृष्णा तुमने हमको द्वारकावासी कहा इसलिए द्वारका से मुझे चलना पड़ा, तो देर हुई है मुझे। देर हो गई आने में, द्वारका दूर है ना हस्तिनापुर से। तो दूसरी बार जब कृष्णा ने पुकारा द्रौपदी जी ने, जब दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 चेला लेकर गए थे उपद्रव करने के लिए, तो उस दिन महाराज युधिष्ठिर ने पूछा अक्षय पात्र में कुछ है, तो द्रौपदी ने कहा नहीं मैं तो खा ली हूं, खा करके धो करके रख दी। तो फिर बड़े चिंता में पड़ गए, अब कैसे जान बचेगी, इतने क्रोधी ऋषि और वो भी शिष्यों के साथ, उनको भोजन नहीं मिलेगा, बड़े क्रोधित होंगे, भस्म कर देंगे। तो उन्होंने ही कहा कि द्रौपदी भगवान तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, तुम अगर उनको पुकारोगी तो जरूर आ जाएंगे, इसलिए तुम बुलाओ कृष्ण को। तो द्रौपदी जी सावधान थी उस समय, वे कहती हैं हे कृष्ण, हे घट घट वासी, आप हमारा संकट दूर कीजिए। द्वारकावासी नहीं कहे तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो 10,000 तो भूखे थे ही, एक और भूखा आ गया। आते ही भगवान कृष्ण ने ऐसा नाटक किया, कहा कि मैं बहुत दूर से आया, अब हमको तुम भोजन दो, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। द्रौपदी तो बहुत चिंता में पड़ गई, अक्षय पात्र में सब कुछ रहता था, लेकिन जब द्रौपदी खा लेती थी तो उस दिन के लिए वो शेष हो जाता। उसने कहा कि गोविंद मैं तो पात्र को धो चुकी हूं और कुछ है नहीं। तो भगवान यहां तक कहते हैं, महाभारत में लिखा है, द्रौपदी मुझे उपहास अच्छा नहीं लग रहा, इतनी भूख लगी है कि यदि कुछ खाने को ना मिले तो लगता है प्राण चला जाएगा। तू कहने लगे कुछ है ही नहीं, कुछ बनाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं बनाने में प्राण निकल जाएगा, तुम वो बर्तन लाओ जिसमें भोजन बनता है। शायद धो कर रखे थे कि बिना धोए रखे थे, जो भी हो भगवान मांगे, नहीं नहीं होगा बर्तन में, जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा बर्तन लाओ, तो द्रौपदी जी बर्तन उठा करके लाई, तो उसमें एक बथुआ का पत्ता सटा हुआ था। बथुआ समझते हैं ना, साग का पत्ता सटा हुआ था। तो उसको ले करके भगवान कहते हैं अरे इससे तो सारा संसार तृप्त हो सकता है, इतना अच्छा भोजन है। इसके बाद भगवान खाए उसको और खा करके डकार दिए, पेट बहुत भर गया। जब इधर डकारे तो उधर 10,000 ऋषि लोग जल में अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे, नहा लिए थे, अब जप कर रहे थे, अब जप करके सब लोग सोच रहे थे, मनोरथ था कि महाराज युधिष्ठिर के हैं आज निमंत्रण है तो चलेंगे खाएंगे। लेकिन जप करते समय में ही पानी के भीतर ही खड़े थे और उनका पेट बिल्कुल भर गया, आकंठ थे तो पेट भर गया। एक ऋषि दूसरे को देखता है केवल हमारी ये दशा है कि उसका है, तो वो उसके तरफ देख रहा है, दसों परस्पर देखने लगे। और दुर्वासा जी का भी पेट ऐसा लगता था कि अब उल्टी तो नहीं, लेकिन वो बहुत सुगंधित और स्वादिष्ट प्रसाद था, अब क्या करेंगे। तो सबने कहा गुरु जी हमारा तो पेट भर गया, हमारा पेट भर गया, हमारा पेट भर गया, गुरु जी का भी पेट भर गया था। तब तो हमने इतना रंधन करवाया, इतना रसोई करवाया महाराज युधिष्ठिर से, ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। ये लोग जानते थे कि रसोई खूब बना होगा उधर, कुछ नहीं हुआ था। तब दुर्वासा जी ने कहा कि ये पांडव भगवान कृष्ण के भक्त है और हम लोग इनको सताने चले हैं, इतना पाक करवा करके नहीं खाएंगे तो दंड भगवान दे सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र की याद आने लगी, एक बार एक साल तक दग्ध किए गए थे सुदर्शन चक्र, अम्बरीश महाराज के विषय में एक कथा है। तो इन्होंने कहा तो अब क्या करें, अब तो जाएंगे और नहीं खाएंगे, बड़ा अपराध। तो सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा जी ने कहा देखो जिसको जिधर रास्ता मिले भागो, वो आ ही रहा होगा सुदर्शन चक्र। जिसको जिधर रास्ता मिले भागो, एक साथ मत भागो। तो सब ऋषि थे, बड़े पहुंचे हुए योगी थे, महात्मा थे। कोई आकाश में वहीं से उड़ा, कोई धरती में धसा, कोई इस दिशा उस दिशा, सब भाग गए, एक भी वहां नहीं रहा। और भगवान खा करके वो साग भीमसेन से कहे, युधिष्ठिर महाराज से कह के बुलाना चाहिए ऋषियों को। युधिष्ठिर महाराज कहे, कैसे बुलाएं, आएंगे, मैं निमंत्रण दिया हूं खाने के लिए, कुछ है नहीं, तो बुलाओ तो, बुलाइए तो। महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को कहा, जाओ घाट पर देख करके आओ, सरोवर पर ले करके आओ उन लोगों को। तो भीमसेन जी जब गए तो वहां चारों तरफ सरोवर भींगा हुआ था, ये पता तो चल रहा था कि बहुत लोग आए थे, नहाए थे। तो वहां के ऋषि जो दूसरे रहते थे उससे पूछे, यहां दुर्वासा जी और उनके शिष्य लोग आए थे? तो बताए, हाँ आए तो थे, लेकिन अकस्मात कहां चले गए पता नहीं। वो बताए, अकस्मात चले गए थे, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, दुर्वासा जी आप अपने शिष्यों के साथ आइए, पंघर्ष कीजिए, टाइम हो गया है। ये लोग जानबूझ करके देर करके आए थे। दुर्योधन ने कहा था कि आप लोग तब जाइएगा जबकि द्रौपदी बेचारी खा ले अच्छा से, उसको कोई कष्ट ना हो। जानता था कि द्रौपदी खा लेती है तो अक्षय पात्र खत्म हो जाता है, उसका बर्तन उसमें बनाया हुआ पदार्थ। तो ये लोग भी टाइम बिता करके चले थे, वह सब भाग गए, पता नहीं किधर गए। आकर के भीमसेन युधिष्ठिर महाराज से कहे, भगवान वहीं थे, सब तो भाग गए, पता ही नहीं है। निमंत्रण स्वीकार करके और सब कहीं चले गए, कहीं दूसरी जगह मिल गया होगा भंडारा, ये बेटर मिला होगा, चाहे उसमें दक्षिणा मिलने वाली होगी, इसलिए भाग गए। साधुओं का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, जिधर दक्षिणा मिले तो चले जाए। तब भगवान ने कहा सारी कथा कि ये खड़यंत्र था दुर्योधन के द्वारा, आप लोगों को दुर्वासा जी के साप से भस्म कराना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सुकृति हैं, पुण्यवान हैं, बच गए। ये कथा स्वयं अर्जुन भी कहे हैं कि भगवान कृष्ण ने दुर्वासा जी के साप से हम लोगों को बचाया। ये कथा क्या लिंक है, कहां से चालू हुआ, भूल जाते हैं। श्री गोपीजनों के गीत का वर्णन हो रहा है, खास लिंक कहां से है, कहां पहले से कड़ी मत जोड़िए, कहां से ये कथा आई। हाँ ये लिंक है, द्रौपदी कठिन समय में भी, मतलब व्यस्त है, फुर्सत नहीं है, फिर भी भगवान को पुकारा उसने, तो कोई कहीं से भी पुकार सकता है। चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कहते, खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाते समय भी सोते समय भी लेना चाहिए नाम, सोते में तो लेटे समय, लेटते समय, लेटे लेटे भी नाम ले सकते हैं, खाते समय में भी ले सकते हैं। खाते समय भी लोग दूसरी बात बोलते हैं, उसके बदले भगवान का नाम बोलना चाहिए। खाईते सुईते, सुईते में सोते समय, जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। स्थान का बंधन नहीं है कि इस स्थान पर ही नाम लीजिए, मंदिर में आकर कहीं जप कीजिए, कोई जरूरी नहीं है, जहां पर ले सकते हैं ले। दौरी हाँकते समय, हल चलाते समय, गाय चराते समय या भैंस धोते समय, चराते समय कभी भी नाम ले सकते हैं, किसी भी काल में और किसी भी काम के समय जप करें। हाँ, केवल बाथरूम में नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शौच कर रहा है और हरे किसने हरे किसमें। हाँ, अगर 24 घंटा बोल सकता है तो उस समय भी बोले, कोई बात नहीं। हमने सुना है अपने कान से, गोरखपुर में श्री राधा बाबा थे भाई जी के साथी, तो वे बाथरूम में नहाते समय जोर जोर से बोला करते थे, गीत गाते थे भगवान कृष्ण का, नहाते समय बोलते रहते थे, हम बाहर से सुनते थे। तो बहुत सिद्ध महात्मा, उच्च कोटि के। एक बार नियम लिए काष्ठ मौन, और काष्ठ मौन तोड़े तो कुछ दिन राधा राधा नाम बोलते थे, बस राधा राधा और कुछ भी नहीं, तो इसीलिए उनका नाम राधा बाबा हो गया। तो ये बोलते थे। कई बार लोग पूछते हैं, भक्त लोग, क्या हम बाथरूम में नाम ले सकते हैं? हाँ, और समय में लेते रहते हैं तो स्वभाव बन जाएगा, तो उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन और समय में नल लेकर के बाथरूम में ही लेंगे तो ये कौन सा घर है? सब समय लिया जा सकता है भगवान का नाम। तो गोपीजन अपने गृह कार्य को करते समय भगवान का कीर्तन करते थे, और अच्छा समय होता था जो दही का मंथन हो रहा था तो वो ढोलक का काम, मृदंग का काम कर रहा था, घरर घरर ढंग से बड़बड़ता था, और हाथों में कंकड़ थे, अलग से कोई करताल झाल लेकर के बजाने कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ये परफेक्ट कीर्तन है, तुम्हें कीर्तन प्रधान होना चाहिए, यानी गाने वाले का शब्द समझ में नहीं आ रहा है या ढोला काली सर डाय 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 कर रहा है, कीर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाया जा रहा है वो साफ समझ में आना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए, और ढोलक करता ले तो उसका साथ देने वाले, उसके पीछे चलने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ढोलक इतना बजता है करताल वही सब हावी हो जाते हैं और कीर्तन बेचारा दब जाता है। तो गोपियों के हाथ में कंकड़, चूड़ियां और कमर में करधनी जिसमें छोटी छोटी किंकड़ियां लगी हैं, किंकड़ी उसको कहते हैं क्योंकि वो छोटा बजता है, किण किण करता रहता है तो किंकड़ी कहते हैं, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी घंटियां होती हैं उसमें, इस तरह से कीर्तन चल रहा था। बहुत सुंदर वर्णन है, निरस्यते जेन दिशाम मंगलम और दशनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रित। कीर्तन कैसा था? कीर्तन में गोपियों के सुंदर कंठ में, आवाज में दही मथने का शब्द भी मिश्रित था। दधनश्च दही का मंथन, और इसके साथ कंकड़ की ध्वनि मिली हुई थी और दही मथने का शब्द, मिश्रित शब्द, तो बहुत सुंदर संगीत चल रहा था। गोपियों के श्रीमुख से गाया हुआ गीत दसों दिशाओं में रहने वाले सभी जीवों के अविद्या को, अज्ञान को, दुर्वासना को नष्ट कर रहा है। अब शील सुखदेव गोस्वामी दूसरे दिन का वर्णन कर रहे हैं। तो रात बीती, एक रात जिस रात पहुंचे उद्धव जी, तो उनकी भेंट नंद बाबा और यशोदा जी से हुई। गोपियों को पता नहीं था कि उद्धव जी आए हैं, कोई पहले से सूचना नहीं थी। और शाम के समय रात्रि काल में जब प्रवेश किए ब्रज में, तो उस समय गौओं के खुर की धूल उड़ रही थी, तो इसलिए दिखाई नहीं पड़ा, कोई भी व्यक्ति देखा नहीं। ये साक्षात नंद बाबा के द्वार पर आए थे, तो नंद बाबा से रात भर बातचीत जो हुई आप सुने ही। अब भगवती उदिते सूर्य नंद द्वारी ब्रजल कसह दृष्टवा रथम सात कौम हम कस्यायामिति चाब्रवन। भगवती सूर्य उदिते, भगवान सूर्य जब उगे, भगवान सूर्य के उगते समय नंद बाबा के द्वार पर नंद द्वारी, नंद बाबा के द्वार पर ब्रजवासियों ने अर्थात गोपियों ने रथम दृष्टवा रथ देखा, सात कौंभम सोने से मढ़ा हुआ रथ, क्योंकि आपस में बात करने लगी। गोपियों ने देखा, उनका एक नियम था, एक खास समय पर सवेरे कहां कहां निश्चित किया था कि वहां सब काम धंधा छोड़ करके जुटती थी, कई जगह की गोपियां जुटती थी, एकत्र होती थी। तो एकत्र होने लगे घर उधर से। नंद बाबा का भवन बहुत प्रसिद्ध था, वहां एक सोने का रथ खड़ा था। सोने का रथ मतलब सोने से मढ़ा हुआ, उसमें परिच्छद जो भी लगे थे सोने के, सोने से सजाया हुआ, मालाओं से और सोने के पत्र आदि से मढ़ा हुआ वो रथ था। तो उसको देख करके गोपियां आपस में बात करने लगी, कश्य अयमिति, हे सखी रथ किसका है, रथ किसका है। ऐसा रथ पहले ब्रजवासियों ने देखा था जो अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। तो एक ही व्यक्ति, मान लीजिए एक गांव में एक ही व्यक्ति कोई कार लेकर के गया हो, तो दूसरी बार देखेगा और लगभग आकार एक समान रहेगा तो सोचेगा वही आ गया, पहले आया था इस कार से। पहले तो पूछिए आपस में किसका रथ है, किसका रथ है, किसी को पता नहीं था किसका रथ है, कहां से आया है। तो सबसे पहले यही बात ली, अक्रूर आगतः किम, कहीं अक्रूर तो नहीं आ गया फिर से। अक्रूर रथ पर चढ़ करके आया था और वैसा ही रथ यह था। तो अक्रूर आगतः किंवा, क्या अक्रूर आया है, यह कंसस्य अर्थ साधक, पक्का कंस का मतलब साधने वाला वो है। कंस जो कहता था वही करता है, करता था। कंसस्य अर्थ साधक, कंस का प्रयोजन पूरा करने वाला, साधने वाला, क्या अक्रूर आ गया। अक्रूर के प्रति घृणा हो रही है। जैन नीतो जदुपुरीन मधुपुरीन कृष्णा कमल लोचन, जिसने हमारे परम प्रियतम, परम सुंदर श्याम सुंदर को रथ पर चढ़ा करके ले गया, जिसने मथुरा पहुंचाया। जैन नीतो मधुपुरी, और मधुपुरी कह करके ये भाव कह रहे हैं कि वो मधुपुरी है, मधु दैत्य वहां रहता था। ये कंस कहने के लिए जादव है केवल नाम मात्र के लिए, लेकिन वास्तव में यह अभी राक्षस है कंस। तो कंसपुरी में, मधुपुरी में ले गया। यदि मधुपुरी का अर्थ यह किया जाए कि मधुवंशियों का नगर, तो इसमें कोई घृणा पैदा नहीं हो रही, लेकिन मधु दैत्य का नगर ये है मथुरा, मधु दैत्य का नगर है, ऐसे खराब जगह, वहां ले गया हमारे प्रियतम श्याम सुंदर। कृष्ण कमल लोचन, परम सुंदर श्री कृष्ण को ले गया मथुरा, आया था ले गया। वही आया क्या, केवल रथ से ये अनुमान कर रहे हैं। वास्तव में इस बार तो उद्धव जी आए हैं उस रथ से, उस समय वहां नहीं थे, रथ के पास वे नहीं थे, इसीलिए शंका हो रही अक्रूर आया क्या। कंस का अर्थ तो पूरा कर दिया, ले गया श्याम सुंदर को, बलराम जी को, अब क्या करेगा, अपने स्वामी को कंस को तो मरवा दिया। ये नहीं कह रहे कृष्ण ने मारा, कृष्ण में कहां आ सकती हो, कमल लोचन इतने सुकुमार हैं वो कैसे मारेंगे। पर जो भी हो, कृष्ण का केवल नाम हुआ, भगवान ने उसको मारा, कंस को मारा, भगवान नारायण ने मारा, हमारे प्रियतम ने शक्ति याद दे दिए और वो मर गया, मारा गया। तो अब क्या करेगा, अब क्यों आया। तो किसी गोपी ने कहा, अब आया है हमको ले जाने के लिए, हमारा मांस ले जाने के लिए, और कंस का पिंडदान करेगा। कंस तो मर गया, अब यहां आया है क्या हम लोगों को ले जाने के लिए, हमारा प्राण तो ले ही गया, श्याम सुंदर को ले गया, अब क्या हम लोगों के मांस से कंस का प्रेत कर्म करेगा, पिंडदान करेगा और कंस के ऋण से मुक्त होगा। आया क्यों यहां पर, और आया तो खाली रथ क्यों लाया, केवल नहीं कृष्ण को बैठा करके लाया, जैसे ले गया था निर्लज वैसे फिर ले करके क्यों नहीं आया। ये कैसे पता है कि कृष्ण नहीं आए हैं, कृष्ण हो सकता है उतर करके अपने माता पिता के यहां गए होंगे। गोपियों को विश्वास है ऐसा हो ही नहीं सकता है, कृष्ण यहां आते तो सबसे पहले हमसे भेंट करते, इतना विश्वास है। पर कृष्ण नहीं आए हैं इतना फाइनल समझ लिया। तो क्यों आया, खाली रथ लेकर के क्यों आया है। एक बार तो कंस का वध करवा दिया, मार दिया, तब मरने के बाद अब अर्धदैहिक क्रिया होती है, तो काम क्रिया कराने के लिए आया है क्या, अब यही काम बाकी रहा ना। लिखा गया है टीका में कि दूसरी सभी कहती अब आया है कि कंस को पिंडदान कराने के लिए, पिंडदान कैसे करेगा, जल से या अन्न से नहीं, अब हमारा मांस देगा, मांस का मतलब जो भी जी रही है अब खत्म करने आया है। जो ले जाना था तो ले गया, अब जीने देगा कि नहीं, ये भाव है, अब जीने देगा कि नहीं, और क्या उपद्रव करेगा कुछ पता नहीं, इस तरह से चिंता में थी। और तब तक तो स्त्रियां इस तरह से जब बोल रही थी गोपियां, उसी समय श्री उद्धव जी पावन सरोवर में स्नान आदि करके आए, कृताहनी का जो आहनिक कर्म होता है संध्या वंदन आदि करके फ्रेश होकर के आए आए तो गोपियों ने देखा, उद्धव जी गोपियों को नहीं देखे, गोपियां उनको देखी, बहुत सुंदर पुरुष श्री कृष्ण जैसा वेशभूषा धारण किया है और वो आया। तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं ब्रज स्त्रियः, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तम वीक्ष्य, उद्धव जी को इन लोगों ने देखा, ये उद्धव जी, ये सुखदेव गोस्वामी का बात है। कृष्णानुचरं, कृष्ण के अनुचर, कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले, कृष्ण के सेवक उद्धव जी को ब्रज स्त्रियों ने देखा, ब्रज की स्त्रियों ने देखा। इनका ये, इसका ये भाव है कि भगवान की जो प्रेयसियां हैं श्री राधा रानी आदि, इन्होंने देखा। यद्यपि राधा रानी नंदगांव नहीं रहती थी, वे जावट में रहती थी अपने ससुराल, जावट थोड़ा ही दूर है नंदगांव से, जावट में रहती थी, पर ये भी आ गई थी। ऐसा पहले कहा गया कि ये श्री गोपियां एक जगह मिलती थी और कृष्ण के विषय में ही बात करती थी कि आ जाएंगे, कॉल आएंगे, उनके गुणों का वर्णन करती थी। तो उस समय लगभग हो चुका था जब राधा रानी आती थी और सब सखियां उससे गांव से पार करके नंदगांव हो करके, और वे उद्धव क्यारी बंद था पहले, वहां वो बातचीत किया करती थी। तो जब आई तो उन्होंने देखा, प्रलंब बाहु, आजानु लंबित भुजा है, घुटने से और नीचे भुजा, या घुटने तक भुजा, बहुत लंबी बाहें हैं, नवकंज लोचनम और नए कमल के समान नेत्र है, पीतांबरम, पीतांबर पहने हुए हैं उद्धव जी, पुष्कर मालिनम और पुष्कर की माला लगाए हैं, पुष्कर मतलब कमल, कमल की माला धारण किए। जिस समय उद्धव जी मथुरा के लिए आ रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ही अपने गले से निकाल करके इनको माला पहनाए थे, वही माला पहन करके आए हैं ब्रज में। और भगवान का प्रसादी, भगवान की प्रसादी माला है, इसलिए स्नान करने के बाद भी वे उसी को धारण किए हैं। भगवान की प्रसादी माला कभी बासी नहीं होती है, उसको कई बार धारण किया जा सकता है, उसी को धारण किए थे। उनका मुख कमल के समान प्रफुल्लित था, परम सुंदर थे, मणिमृष्ट कुंडलम और मणियों का कुंडल था और बहुत स्वच्छ किया हुआ चमचम चमक रहा था कुंडल कान में। भगवान जो पहनते हैं वही आभूषण पहनते हैं, भगवान का प्रसाद, कभी भी भूल करके भी अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदे होंगे। कृष्ण जिसको पहनते हो तो नित्य नया रहता है, उसी को वस्त्र और भूषण, वस्त्राभूषण धारण किए थे। गोपियों ने देखा, वे देखते ही थोड़ा सा निकट आई एकांत स्थान। गोपियां, वास्तविक बात है कि भगवान ने बताया था कि आप इस समय जब जाएंगे तो श्री गोपियां इस स्थान पर मिलेंगी, मेरे गांव से, नंदगांव से लगभग पूरब में मिलेंगे, पूरब दक्षिण के कोने पर, पूरब भगवान ने बताया था। इसलिए उद्धव जी स्वयं ही आए, नंद बाबा से मिल ही चुके थे, जब यशोदा जी से मिल चुके थे और उनका शोक तो ये पूरा दूर कर ही दिए थे, शोक दूर हुआ नहीं। अब रही श्री गोपियां, भगवान ने कहा था कि गोपीजनों से मिलना और ये संदेश कहना, तो किस स्थान पर मिलूंगा, तो एक रहह एकांत जगह था जहां दूसरे लोग नहीं जाते थे, उस वन में गोपियां जाती थी, तो उस वन में उद्धव जी गए। गोपियों ने नहीं बुलाया उनको, उनको तो जानकारी ही नहीं थी कि उद्धव जी आए, लेकिन उद्धव जी को जानकारी है कि यहां इस टाइम गोपियां बैठती हैं, आती हैं, बात करती हैं, तभी आए। इतिस्म सर्वा परिबब्र रूप चुका, किस तरह से बोलती हुई कि कौन है, कृष्ण जैसा वेशभूषा धारण किया है, कुतश्च ये कहां से आया है, और कस्य अच्युत वेशभूषण, किसका व्यक्ति है यह, किसका सेवक है, किसका पुत्र है, कौन है, और क्यों अच्युत जैसा वेशभूषण धारण किया है, श्री कृष्ण जैसा क्यों धारण किया है। इति स्म यह बोल करके, यह चर्चा करके वे आई और चारों तरफ से उद्धव जी के आसपास उपस्थित हो गई। उद्धव जी उस समय खड़े थे, अभी अभी आए ही थे, उसमें उत्सुक, बड़े उत्सुक थी श्री कृष्ण के विषय में कुछ सुनने के लिए, जानने के लिए। तो वेशभूषा देख करके वे समझ गए कि अच्युत से, श्री कृष्ण से इनका संबंध जरूर है। तब तो श्री कृष्ण अपना मुकुट दिए हैं, कुंडल दिए हैं, अपना वस्त्र दिए हैं। तमुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रय, सुखदेव जी कहते हैं कि उनको घेर लिया, और उद्धव जी वास्तव में क्या है, उत्तम श्लोक के चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं, अथवा उत्तम श्लोक के चरण कमल के जो आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण जब लेटते थे कभी, तो उद्धव जी तकिया के रूप में, पैर की तकिया के रूप में भगवान के चरण कमल को अपने बक्षस्थल पर रख लेते थे, ये पाद संवाहन करते थे, तो इसीलिए उनको उत्तम श्लोक पदाम्बुज आश्रय कहा गया। श्री कृष्ण के आश्रय में ये हैं, एक अर्थ तो ये भी है, लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमलों के ये आश्रय हैं। जब कोई व्यक्ति कभी सोता है तो आपने देखा होगा पैर के पास भी तकिया रखता है, तो ये भगवान के पैर के तकिया है उद्धव जी। उनको देखा, उनको परिबब्रूह, परिबब्रूह का अर्थ है घेर लिया। गोपियों के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुचि स्मिता, इनके मुख पर आनंद की मुस्कान आ गई। जो प्रियतम से संबंधित कोई व्यक्ति आया है उनका वेशभूषण धारण करके, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उस महाविरह के दुख में भी प्रियतम से संबंधित व्यक्ति के बारे में कुछ जानकर बहुत खुशी हुई। पुस्तित की अचित जैसा वेशभूषण बनाया, और ये कहती हुई उनके चारों तरफ ही आ गई। इसके बाद उद्धव जी को श्री गोपियों ने आसन दिया, जो भी आसन रहा होगा, प्रियतम के दूत हैं तो आतिथ्य किया, आसन दिया सबसे पहले, आसन दिया और उनके आसपास खड़ी हुई, बैठी। तो तम प्रश्रेणावनता सुसत्कृतम, उद्धव जी का सुंदर सत्कार किया। क्या सत्कार किया? सब्रीढ़ हास क्षण सुंदरता आदमी, सब्रीढ़ लज्जा, हास निरीक्षण और मधुर वचन आदि के द्वारा। बीड़ा लज्जा स्त्रियों में स्वाभाविक होते हैं, उद्धव जी को देख करके, उनके पास रह करके, सबसे पहले अपना मुख नीचा करके और अपने वस्त्र को, घूंघट को थोड़ा सा और बढ़ाया, इसको लज्जा कहते हैं, पर डायरेक्ट नहीं देखना, घूंघट को कुछ बढ़ा लेना, मुख ढक लेना, इसको लज्जा कहते हैं। और हास जब ये पता चला कि हमारे प्रियतम के सखा हैं तो कुछ हंस रहे थे, हंस असल में आनंद आ रहा था कि हमारे प्रियतम के दूत हैं तो इसलिए हंसी आ रही थी, हंस रहे थे, मुस्कान इसको कहते हैं। हंसने का अर्थ होता है जिसमें दांत दिखाई पड़े, और दांत न दिखाई पड़े तो इसको मुस्कान कहते हैं, है ना। एक स्वागत है किसी अतिथि के आने पर, हास्य चेहरे पर होना चाहिए, नहीं कोई आया और गिरा लिया मुंह के आया। गोपियों के मुख पर सुख की मुस्कान, सुचिस्मिता ऊपर कहा गया था, तो यहां भी हास वो मुस्कान के लिए ही है हास। और हास के बाद तब जब सखा है श्याम सुंदर के, तब इच्छा है सामने देखना प्रारंभ किया, पूरा अवलोकन, इसके बाद सुंदर भाषण, सुंदर वचन, सुनृत मधुर वचन बोलना प्रारंभ किया। स्वागत में मधुर वचन बोलना बहुत अच्छा स्वागत है, ठीक है आप आए, अच्छा कि समाचार पूछना, कुशल पूछना। उस समय उद्धव जी रहसी एकांत में आसने उपविष्ट बैठे थे, तो उनसे रहसी अपरिच्छन एकांत में श्री गोपियां पूछने लगी, विज्ञाय संदेश हरम रमापते, रमापति का संदेश लेकर के आए हैं, रमा माने राधा रानी या लक्ष्मीपति, भगवान का संदेश लेकर के आए हैं यह जान करके श्री गोपियां पूछने लगी। यह रमापति शब्द जो है ये लक्ष्मीपति का वाचक है, तो ये सुखदेव गोस्वामी की एक असूया उक्ति भी है। सुखदेव गोस्वामी गोपियों के पक्षपाती हैं, ये व्यंग है, लक्ष्मीपति के दूत बनकर के आए हैं, क्या जरूरत है इनकी यहां। रमापति का इसलिए अर्थ है, ऐसे रमापति का अर्थ है राधा रानी के प्रिय रमा, असली रमा यही है, मूल रमा है। तो जब पता चला कि श्याम सुंदर के सखा हैं, और सखा ही केवल नहीं है, संदेश लेकर के आए, संदेश हरम, खबर लेकर के आए, तो वे बोलने लगे। पूछा नहीं कि आप कहां से आए हैं, क्या अपने आप कहते हैं, जानी मह, हम जानती हैं। देखिए गोपियों का वाम भाव भगवान कृष्ण के प्रति, जानी मस्ताम, हम आपको जानती हैं, जदुपते पार्षद, जदुपति के पार्षद हैं आप, मधुपति नहीं कह रहे, जदुपति या गोपपति नहीं कह रहे हैं, हम जानती हैं आप जदुपति इस समय जादुओं के जो नायक बने हैं, मथुरा के सिंहासन पर हैं, उनके दूत हैं आप, ब्रजपते भी कह सकती थी लेकिन ब्रजपति नहीं था, उनके पार्षद हैं और उनके भेजे हुए आए हैं आप, उन्होंने भेजा है, समुपागतम, सम्यक रूप से आए हैं, खूब सवारी करके रथ पर चढ़ करके आए हैं, ये भी पता हो गया है। समुपागतम, सम्यक उपागतम। जब श्याम सुंदर राजा बन गए हैं तो राजा रथ से आपको भेजे हैं, ये पता चल गया है, जानी मह। और भर्तरा इह प्रेषित, अपने स्वामी जदुपति के द्वारा भेजे हुए आप आए हैं। किस लिए आए हैं? पित्रोह प्रिय चिकित्सा, अपने माता पिता का प्रिय करने के लिए भेजे हैं आपको। मतलब हम लोगों को तो उनको स्मरण ही नहीं आया होगा, हम लोगों का स्मरण नहीं आया होगा कभी, तो वो भी हैं, गोपियां भी ब्रज हैं, ये तो उनको याद नहीं आई हो। भेजे हैं, जानते हैं, माता पिता के लिए भेजे हैं। ये भी पता लग गया है कि हम लोग आप शाम को ही आए और उनके माता पिता से मिले हैं, ठीक है, वो भी उनका प्रिय करने के लिए, प्रिय करने के लिए भेजे हैं, न कि उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं है वो, तो इसलिए भेज दिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कि नंद जसोदा रोते रोते मर जाएंगे तो उस पर बड़ा कलंक आएगा, इसीलिए कि जीवित रहे किसी तरह से एक बार भेज दिए आपको। प्रेम नहीं है नंद जसोदा से उनको, प्रेम होता तो अब भेजते। कितना रोए हैं नंद बाबा, कितना जसोदा रोई है, इतने दिन के बाद भेजे हैं, तो केवल इसीलिए ना कि भाई ये मर न जाए, रोते रोते मर न जाए, जीवित रहे, नहीं तो हल्ला होगा ना कि कृष्ण जैसा नालायक बेटा कोई नहीं, माता पिता मर गए रोते रोते नहीं आया। तो भेजे हैं आपको इसीलिए कि नंद जसोदा जीवित रहे, अपनी इज्जत बचाने के लिए भेजे हैं, न कि नंद जसोदा से उनका प्रेम है। हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया पूरा पूरा कृष्ण को। अरे कि अभी बात कह रहे हैं कि जब हमारे पास तो, हमारा तो स्मरण नहीं आया होगा निश्चित, अगर आया होता तो हम लोगों से भेंट करने के लिए कहते ना, क्यों याद करेंगे, क्या जरूरत। कोई सखी कहती है तुम क्यों ऐसी आशा करते हो कि हमारी याद करेंगे, अरे अब वो बड़े राजा हो गए, अब वो बात करेंगे, पटना दिल्ली पहुंच गए, अब गांव की बात करेंगे, अब उनका पोजीशन देखो वो क्या हो गए, अभी ऐसा मत करो कि आएंगे बांसुरी बजाएंगे और रास करेंगे, ये तो नाम ही मत लो, अपने आप ये सब चालू कर दे। अभी उद्धव जी चुपचाप कुछ कहने के लिए रुके थे, तब तक इस प्रसंग को मैं रत्नाकर जी के शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं। पहले मैं वहीं से चालू करता हूं, जब उद्धव जी चले, जो कथा बिगड़ती नहीं है, जब उद्धव जी चले मथुरा से गोपियों से मिलने के लिए, संदेश देने के लिए, मुख्य तो गोपियां ही थी, तो रत्नाकर जी लिखते हैं, प्रेम भरी कातरता कान्ह की प्रकट होत, ये किसी पृष्ठ पर नहीं है, गोपी कृष्ण की ये कातरता अपने माता पिता के लिए और गोपियों के लिए, क्योंकि मैं मथुरा में नहीं रहूंगा, मैं उब चुका हूं, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन हे मित्र तब तक तुम जाकर के खबर दो उनको कि मैं आऊंगा। उद्धव अघाई रहे ज्ञान ध्यान सरक, भगवान कृष्ण विकल हो गए थे वृंदावन जाने के लिए ब्रज में, तो उद्धव जी तो चकित हो गए कि आए मथुरा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, दुष्टों के वध के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, और अभी जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी चकित हो गए। कहे रत्नाकर धरा की धीर धूर भयो, रत्नाकर कभी कहते हैं कि पृथ्वी का धैर्य तो धूल हो गया, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए और अब पुनः वृंदावन में जाकर के गोचारण या रास विहार आदि करना चाहते हैं, तो पृथ्वी का जो धैर्य था, इस पर इतने असुर बढ़ गए थे, लोड बढ़ गया था, पृथ्वी का धैर्य तो धूर हो गया, मतलब खत्म हो गया एकदम। पृथ्वी घबराने लगी कि हाँ आए हाय, भगवान अवतार लिए मेरा दुख दूर करने के लिए, लेकिन मुझ पर तो वही लोड रह जाएगा पापियों का। धैर्य खत्म हो गया पृथ्वी का। राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने संशय समाय धाय धाम विधि हर। और जितने देवता हैं तो अपने स्वार्थ में रहते हैं, यही देख रहे थे भगवान आएंगे हमारे विरुद्ध रहने वाले दैत्यों का वध करेंगे, लेकिन देवता सब मीटिंग करने लगे, घबरा गए कि अब क्या करें अब क्या करें, तो भी ब्रह्मा जी के पास दौड़े सब लोग। जब ही भगवान ये इच्छा व्यक्त किए कि मैं ब्रज में जाना चाहता हूं, तो देवता सब भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी के पास भागे कि वे लोग कृष्ण को रोकें, कोई उपाय करें, मथुरा में रहने दें, यहां से युद्ध चालू होगा जरासंध आदि से और बहुत दैत्यों का वध होगा, पृथ्वी का भार दूर होगा। तो इसके लिए वे दौड़े, अब क्या करें, दूसरा उपाय क्या था, वे ब्रह्मा जी के पास दौड़े, देवता लोग दौड़े मतलब विमान से गए जल्दी जल्दी और शिव जी के पास गए। सुरराज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव समय संशय समाय धाय धाम विधि हर के आई फिरी ओप बाम बाम ब्रज गामनी के। अब ब्रज के गांव गांव में उल्लास छाने लगा, जो ही भगवान इच्छा किए जाने के तेव ही उल्लास छाने लगा। और बिरहिणी बामनी के बाम अंग फर के, और बिरहिणी ब्रजबालाओं के बायां अंग फड़कने लगा, मतलब शुभ की सूचना होने लगी। जब भगवान आने का संकल्प कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे, बाएं जांघ, बायां हाथ, बाएं आंख। स्त्रियों के बाम अंग जब फड़कते हैं तो ये शुभ सूचना होती है। एक पद में यह भी कहा गया है कि शेष नाग बड़े मुश्किल से पृथ्वी का लोड उठाए थे मंडल का, लेकिन जब भगवान जाने के लिए उत्सुक हुए तो भगवान शेष नाग घबराने लगे कि अब कितना दिन भार ढोना पड़ेगा पापियों का, तो उनका सिर और दुखने लगा, कंधा दुखने लगा कि पृथ्वी को अपने मस्तक पर लिए हैं और पृथ्वी पर भार क्या है, भार है पापी लोगों का भार, दुष्कर्म करने वाले राजाओं का भार। यदि हम मथुरा से ब्रज में चले आएंगे तो मेरा जो लोड कम होने वाला था वो नहीं हो पाएंगे। तो भगवान शेष नाग के गर्दन में दर्द होने लगा, अब क्या होगा। तो फिर भी भगवान चले, किस प्रकार से कातरता व्यक्त हुई थी इसको भी यहां लिखा गया है, इस किताब में है। धैर्य रख करके सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पृष्ठ 27 पर है, जब भगवान श्याम सुंदर बात कर रहे थे उद्धव जी से, तो वे कहते हैं नंद यशोमति के प्रेम पगे पालन की, नंद यशोमति के दाड भरे लालन की, लाल चल गावती दाड भरे लालन की, कह रात न कर सुधा कर प्रभा सुमणी, कह रात न कर
मंजू मृग नैननी के गुण गान गावती। जमुना कछरणी की रंग रस रारणी की, जमुना कछरणी की विपिन बिहारन की हंस हो मसावती। सुधि ब्रज वासिनी दिवय सुख रासुनी की, उधोनीत हम को बुलावन को आवती।
उधोनीत हम को
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रजवासियों की हमें सुधि आ रही है, तो सुधि क्या क्या करती है विशेषता बता रहे हैं।
नंद यौज सुमती के प्रेम पगे पालन की, नंद यौज सुमती के
सबसे पहले भगवान याद कर रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रेम से पूर्ण पालन की सुधि आ रही है, दिला रही है सुधि। किस प्रकार से स्नेह से हमारा लोग पालन किए, पालन पालन करते पोषण, किस तरह माँ यशोदा ने हमें माखन खिलाया, दूध पिलाया, दही खिलाया, इसको पालन कहते हैं। और लाड़ भरे लालन, स्नेह से भरा हुआ लालन, गोद में लेना, उत्तोलन करना, चुमना, और कई प्रकार से लालन। तो यशोदा और नंद के लालन और पालन की हमें याद आ रही है। और रत्नाकर कवि कहते हैं, भगवान ये कहते हैं, सुधाकर प्रभासो मणि, गोपियां कितनी सुंदर हैं, चंद्रमा के प्रभा से मढ़ा हुआ है उनका मुख, चंद्रमा की प्रभा से मढ़ी हुई है, अत्यंत सुंदरी है। मंजू मृग नयननी के गुणगन गावती, और मुझे मंजू मृग नयननी जिनकी आंखें मृग के समान हैं, उन गोपियों के गुण का यह स्मरण आ रहा है। मंजू मृगनयननी के गुण गन गावत, जमुना कछारन की, और मुझे स्मृति आ रही है जमुना के कछार की। कछार ब्रजभाषा भी है और भोजपुरी भी है। जमुना के तट की याद आती है। रंग रस रारण के, रास बिहार के और रार की भी याद आ रही है। रार मतलब फूल चुनने में, जैसे तैसे दही लूटने में, गोपियों से किस तरह रार होती थी, झगड़ा होता था, उसकी याद आ रही। छीना झपटी, जमुना कछारण की, रंग रस रारण की, विपिन बिहारण की, हंस हमसावती। और किस प्रकार मैं वन में विहार करता था, स्वच्छंद घूमता था, गाता था, बांसुरी बजाता था, वो सब याद करा रही है। सुधी ब्रजवासिनी दिवैया सुखरासनी की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। अरे उद्धव, ब्रजवासियों की याद आ रही है जो हमको बहुत सुख दिए, दिवैया सुखरासनी, तो उधो नित हमको बुलावन को आवती। ये आवती शब्द सुधी के लिए है कि हमको इन सब की सुधी आ रही है, और ये मानो हमको बुला रही है, रोज रोज बुलाती है कि हमको वृंदावन चलने के लिए कहती हैं।
नन्दयाज सुमति के प्रेम पगे पालन की
नन्दयाज सुमति
लाड भरे लालन की लाल चलगावती कहे रात न कर सुध कर प्रभास माणी कहे मंजू मृग नैननी के गुण गान गावती जमुना का छारनी की रंग रसरारनी की जमुना का जमुना का छारना की रंग रसरारनी की जमुना का छारनी की विपिन विहार न की हंस घूम सावती सुधि ब्रजवासीन दिवैय सुख रासीन की सुधि उधोनीत हम कौ बुलावन कयावती उधो
उद्धव जी समझाने लगे भगवान को कि आप इतना मत रोइए विकल मत होइए क्यों घबरा रहे हैं आप इतने परम ज्ञानी हैं समझदार हैं अरे सब संसार में संबंध होता है और विजोग होता ही है फिर अब इतने विकल क्यों हो रहे हैं तो इनके समझाने पर भगवान उद्धव जी से कहते हैं ये निचले पद में है
प्रेम ने मानी फल निवारी उरयंतर प्रेम ने मान ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी लइए हम कहे रत न कर सुधा कर मुखिनी ध्यान कहे रत न सुना सा धोई ज्योति जोई जरी लइए हम आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूर आओ एक बार तब यही नीति की प्रतीति धरी लइए हम मन सौ करे जे सौ श्रवण सिर आखिना सौ मन सौ उद्धव तिहारी सीख भीख करी लइए तिहारी सीख भीख करी लइए
उद्धव जी भगवान को समझा रहे थे, अरे आप अपना स्वरूप याद कीजिए, सांसारिक संबंध से आप परे हैं, सुख दुख से परे हैं, ज्ञान से अपने चित्त को शांत कीजिए, ब्रह्म ज्ञान से। कुछ उपदेश भी किए, ब्रह्म ज्ञान क्या है ये है। तो भगवान कहते हैं, उद्धव ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूं, एक बार गोकुल जाओ, एक बार नंदगांव होकर के आओ, इसके बाद जो कहोगे वो मैं स्वीकार करूंगा। प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतर, तुम जो ये कह रहे हो कि ये प्रेम करना सब बेकार बात है, निष्फल है, कि हृदय में किसी के प्रति इतनी आसक्ति, गोपियों के प्रति खास इतनी आसक्ति जो आपकी है ठीक नहीं है, अरे आपको और काम करना है, बड़ा बड़ा काम करना है, और इस तरह से आप किसी के प्रति आसक्त मत होइए, अनासक्त रहिए, ब्रह्म ज्ञान में मन लगाइए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है आपके अनुसार प्रेम नेम निष्फल है, तो मैं निवारी उड़ अंतर से, मैं इसको हृदय से निकाल दूंगा, किसी से प्रेम आसक्ति नहीं करूंगा। ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी लई है, और ब्रह्म ज्ञान आनंद का निधान है, तो मैं उसको हृदय में भर लूंगा। हृदय में जो प्रेम की गांठ लग गई है, गोपीजनों से आसक्ति हो गई है, तो मैं उसको निकाल दूंगा हृदय से, और आपके द्वारा जो उपदिष्ट ब्रह्म ज्ञान है उसका आनंद हृदय में भर लूंगा। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखिनी ध्यान, और इस समय तो मैं चंद्रमुखी सुधाकर मुखी मतलब चंद्रमुखी श्री गोपियों का ध्यान कर रहा हूं, स्मरण आ रहा है, और मेरे आंख से बहुत आंसू निकल रहे हैं, तो ठीक है उनका ध्यान मैं आंसुओं से धो लूंगा, अभी तो हमको रोने दीजिए जो रो रहा हूं। और जो ब्रह्म ज्ञान की ज्योति आप बता रहे हैं, तो उस ज्योति को देख करके उसमें मैं जर लूंगा, ठीक ज्योति जर लई है ब्रह्म ज्ञान में ज्योति में हम मैं जर लूंगा, ये काम करूंगा। लेकिन तुमसे प्रार्थना है एक बार धारी एक आओ, एक बार भारी गोकुल गली की धूल, एक बार तुम नंदगांव जाओ और वहां के गली की धूल धारण कर लो, बस इतना ही हमारी तमन्ना है, हमारी इच्छा है, एक बार नंदगांव जाओ और वहां के गली की धूल को थोड़ा लगा लो, और इसके बाद जो कहोगे मैं करूंगा। एक बे आओ एक बार भारी गोकुल गली की धूल, तब इस नीति की प्रतीत धरी लई है, जो तुम सिखा रहे हो हमको, तब मैं उसको समझ लूंगा, इस नीति को स्वीकार कर लूंगा। और गोकुल से आने के बाद जो तुम कहोगे उसको मैं मन में, करेजा में, आंख में, सिर में, आखिन में बसा लूंगा, जो कहोगे। मैं तुम्हारी शिक्षा को वैसे स्वीकार करूंगा जैसे कोई भिखमंगा भीख को संभाल करके रखता है। उद्धव तिहारी सीख भीख करी लई है, लेकिन इसके पहले कुछ मत सिखाओ, मैं धारण करने योग्य नहीं। और उद्धव जी जब ब्रज में आकर के लौटे मथुरा, तो सीधे कहने लगे आप चलिए चलिए ब्रज में, यहां रहना ठीक नहीं है, यहां कौन प्रेमी है, सारे प्रेमी आपके ब्रज में। तो भगवान ने किसी भी तरह से उद्धव जी को ब्रज में भेजना चाहते हैं, वहां जाने के बाद ये खुद ही बदल जाएगा। आज प्रेम के नियम को निष्फल कह रहा है, ये प्रेम में ऐसा दीवाना होगा कि अब फिर उद्धव जी आए तो कहे कि छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, गौन रौन लेती सो कदापि करते नहीं। यदि यहां पर आपको सूचना नहीं देनी होती तो मैं ब्रज से इधर आया नहीं होता, कहीं कुटिया बना करके रह गया होता। हो तो चित जचाव जौन रावरे चितावन को, तजी ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं, यहां आता ही नहीं। और आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस मैं सूचना दे दिया और मैं चलता हूं ब्रज में। उद्धव जी ऐसे कहे, इसी के लिए भगवान इनको भेज रहे हैं। प्रेम ने मानी फल निवारी उर अंतर ते, मैं कह दिया बीच में कि बहुत धीरे बताना चाहिए तो तुम समझे नहीं, अब केवल ठोक रहे हो, बजाओ उसको अच्छा से ताल के साथ बजाओ। प्रेम ने मानी फल निवारी उर अंतर ते, प्रेम ने मानी फल ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी लइहे हम, कह रतन कर सुधा कर मुखिनी ध्यान, कह रतन आसुना सा धोई ज्योति जोई जारी लइहे हम, आओ एक बार धारी गोकुल गली की दूर, आओ एक बार आओ एक बार धारी गोकुल गली की दूर, आओ एक बार तब यही नीति की प्रतीति धरी लइए हम, मन सो कर जे श्रवण शिर आखिना स, मन सो कर उद्धव तिहारी सीख भीख करी लइहे हम, जब उद्धव जी की भेंट हुई गोपियों से, उद्धव जी के आने का समाचार सुन करके श्री गोपिया चारों तरफ से दौड़ती, उद्धव जी चलते हैं भगवान से संदेश लेकर के, जो दो श्लोक में बताया गया है कि उनकी क्या दशा हुई ब्रज में पहुंचने पर। लैके उपदेश संदेश पन उधो चले, पृष्ठ 28 पर है नीचे का 36 नंबर, लैके उपदेश संदेश पन उधो चले, सुजस कमाई बे उछाह उदगार में, उद्धव जी बड़े उत्साह से चले सुजस कमाने के लिए, नंद बाबा को सुखी कर देंगे, गोपियों को खुश कर देंगे, वे विरह दुख भूल जाएंगे, अपने ज्ञान के अभिमान में चले, ऐसा उपदेश करूंगा प्रवचन करूंगा कि सबका दुख खत्म हो जाएगा, सुजस कमाने के लिए चले। रत्नाकर जी कहते हैं, कह रतन कर निहारी कान कातर पे,
आतुरा भय मोर है मन न संहारने
लेकिन ब्रज पहुंचने पर इनकी क्या दशा होगी, अभी वहीं थे मथुरा में जब कृष्ण को रोते हुए देखे, हिचकी देते हुए बार बार गोपियों की याद करके, तो आतुर भये यों रहो मन न संभाल में, उनका मन संभाल में नहीं रहा, वे आतुर हो गए। ब्रज पहुंचने पर क्या दशा होगी ये तो बाद में पता चलेगा इनको, कृष्ण की दशा देख करके ही आतुर हो गए, मन स्थिर नहीं रहा।
ज्ञान गठरी की गाठ छर की न जान्यो कब, हर हर पूंजी सब सर की कछर में,
जो ज्ञान की गठरी बांधे थे तो गांठ कब खुल गई पता भी नहीं लगा, सारा ज्ञान गिर गया। ब्रज में पहुंचने पर दशा हो रही है, ज्ञान गठरी की गांठ छर की न जानो कब है, जाने भी नहीं कि ज्ञान की गठरी जो बांधे रख से कड़ा हृदय में, और ज्ञान की गठरी गांठ खुल गई, ज्ञान खत्म हो गया। हरे हरे पूंजी सब सर की कछार में, हरे हरे में धीरे धीरे जब गांठ खुल गए तो धीरे धीरे पूंजी अर्थात ज्ञान की भावना, इनका ज्ञानाभिमान जमुना जी के कछार में सब खत्म हो गए। डार में तमालनी की कछु बिरमानी, और कुछ तो जमुना के किनारे जो तमाल वृक्ष थे उसमें कुछ फंस गई गठरी जो बची थी वहां गिरे कुछ, और कछु अलझनी है करीरन के डार पर झाड़ पर, और कुछ करील के झाड़ पर गिरी। तो ये ब्रज की शोभा देखते देखते केवल वृक्षों को और करील के वृक्ष को लताओं को देखते ही सब ज्ञान इनका खत्म हो चला। अब ये प्रेम में फंसने लगे, ये ब्रजभूमि का ऐसा प्रभाव था, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उसमें बिंदु जी ने लिखा है कि लगकर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, कांटे समझाने लगे उनके वस्त्र से फंस करके। इसका मतलब ये है कि ब्रज के वृक्ष भी कृष्ण प्रेम से भरे हैं, कांटे लग रहे थे, कांटा लगना भी प्रेम उत्पन्न कर रहा था, और मानो ये करीर के कांटे कह रहे थे तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, ज्ञान के अभिमान में चले। बृहस्पति जी से पढ़े हैं ना, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञान के पंडित हैं, तर्क शास्त्र के पंडित हैं, राजनीति के महाविशारद हैं, तब तो जादवों के ये मंत्री बने हुए। इनको बहुत विश्वास था कि अरे ये क्या है, दो मिनट का काम है इनको सुखी करना, तो यही है ना कि आपके प्रेम में आपके सेवा के में फंसे हुए हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, मैं निकाल दूंगा उनके हृदय से, वो बेचारे क्यों मारे इस तरह चिंता कर, सुखी हो जाए। भगवान ने कहा कि एक बार जाओ गोकुल की गली की धूल धारण करके आओ, और इसके बाद जो कहोगे मैं मानूंगा। अभी तो रास्ते में जा रहे थे तब तक तमाल वृक्ष और करीर वृक्ष पर ही सारा पूंजी खत्म हो गया। लैके उपदेश संदेश पन उधो चले, लैके संदेश पन उधो चले, सुज कमाई बे उछा उदगार में, कह रत न कर
निहारी कान कातर पैर तन कर आतुरा भये वो रहो मन न संहार ज्ञान गठरी की गाठ छर की न जान्यो कब ज्ञान गठरी की गाठ हर हर पूंजी सब सर की कछर में डर में तमालनी की कछु वीर मानियारु डर में तम कछु आरु झानी है करी रन के झार पे कुछ ज्ञान तमाल वृक्ष की डालियों में उलझ गया फंस गया और कुछ करील के झाड़ पर. इसका मतलब यह है कि वृंदावन के ब्रज के तमाल वृक्षों को देख करके उनको इतना आनंद आने लगा और इतना प्रेम उमड़ा कि तमाल के वृक्ष जिनके नीचे भगवान बांसुरी बजाए हैं जिन पर चढ़े हैं खेले हैं वही बहुत सुंदर लगने लगे और ब्रह्म ज्ञान आदि की बात भूलने लगे. वैसे श्री उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान आदि में नहीं थे, भगवान कृष्ण के प्रेम में ही थे, लेकिन उस प्रेम का उत्कर्ष ब्रज में उन्हें दिखाई देने लगा और कुछ करील के झाड़ी की सुंदरता देखने लगे. जेम जेम नंदगांव के निकट पहुंचने लगे तेम तेम भगवान के प्रेम में डूबने लगे और ये अभिमान कि मैं उनको सुखी कर दूंगा उपदेश दे करके ये जाता रहा. 29वें पृष्ठ पर शुरू में है 37 नंबर का. यहां ब्रजभाषा में हरे हरे का अर्थ होता है धीरे धीरे. जब जब बढ़ रहे थे धीरे धीरे इनका ज्ञान का गुमान घटने लगा. हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जान लगे हरे हरे जोग के विधान ध्यान होते तरी लगे नैननी में नीर रोम सकल शरीर छायो नैननी में प्रेमायद्भुत सुख सुझी परिव लगे प्रेमायद गोकुल के गांव की गली में पग पारत ही गोकुल के गांव की भूमि के प्रभाव भाव और भरी लगे भूमि के प्रभाव भाव ज्ञान मार तंड के सुखाए मन मान सको ज्ञान सरस सुहाए घन श्याम करी लगे
हरे हरे ज्ञान के गुमान घट जाने लगे, धीरे धीरे ज्ञानाभिमान दूर होने लगा। वास्तव में यथावत ये उद्धव जी का ही वर्णन नहीं है, ये ब्रजभूमि के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। तो ज्ञानाभिमान, ज्ञान का गुमान, गुमान मैंने अभिमान, गुमान भोजपुरी शब्द भी है, ज्ञान का अभिमान धीरे धीरे घटने लगा, घटी जाने लगा। जोग के विधान ध्यान होते तरीबो लगे, ध्यान हुमे तेज तरीबे लगे। और योग की जो विधियां हैं, इस तरह से ध्यान करना, प्राणायाम करना, आसन करना और चिंतन करना कि मैं ही ब्रह्म हूं, शिवो हम सो हम, जो विधान है ये मंत्र जपना, ऐसे रहना ऐसे रहना, यम नियम आसन और प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, सब विधान है ऐसे करना वैसे करना। तो अब तो ब्रजभूमि का दर्शन करके उद्धव जी का योग विधान सब ध्यान से भी जाने लगा, मतलब मन में भी स्मरण नहीं आ रहा है कि अब इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए, ध्यान से ध्यान में भी नहीं जोग रहा है। अब प्रकट क्या होगा, और नैननी में नीर, अब आंखों में आंसू भरने लगा, रोम सकल शरीर छोड़, और ब्रज का दर्शन करके सारे शरीर में रोमांच भर गया, प्रेम अद्भुत सुख सुध परिवे लगे। और प्रेम में क्या अद्भुत सुख है इसकी अब सूझ, इसकी समझ आने लगी। गोकुल के गांव की गली में पग पारत ही, गोकुल गांव की गली में, नंद गांव को भी गोकुल कहते हैं, बरसाने को भी गोकुल कहते हैं, वृंदावन को गोकुल कहते हैं। तो गोकुल के गांव की गली में पग पारत ही, गोकुल के गांव की गली में पैर रखते ही भूमि के प्रभाव भाव औरे भरने लगे। इस भूमि के प्रभाव से कुछ और ही भाव हृदय में उठने लगा। ज्ञान मारतंड के सुखाए मन मानस को सरस सुहाए घन श्याम करबे लगे। दोपहर के सूर्य को मारतंड कहते हैं, उसी समय सबसे ज्यादा तीखा रहता है, कड़ा घाम रहता है। तो उनका मन रूपी सरोवर, उद्धव जी का मन रूपी मानस, मानस मन सरोवर, ज्ञान रूपी सूर्य के, सूर्य रूपी ज्ञान के द्वारा सुखा दिया गया था। ज्ञान सूर्य से सूख गया था। किसी सरोवर में मान लीजिए पानी हो और सूख जाए किसी तरह से, कितना खराब लगेगा, सूख गया था। अब उनके हृदय में घनश्याम छाए, घनश्याम मतलब घना सांवला बादल, जल वाला बादल, वर्षा होने लगी धीरे धीरे। अब केवल छाया अभी हो रही है, तब तक तो सरस होने लगा, सरस सुहाए घन श्याम करने लगे। अब सूखे हुए सरोवर को घन श्याम सरस करने लगा। जो कृष्ण का अनुभव, कृष्ण से प्रेम, ये मथुरा में नहीं सीखे, ब्रज में जाकर सीख रहे, वहां की भूमि का अद्भुत प्रभाव है, ये वो आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। ये आजकल के जो ज्ञानाभिमानी हैं, ऐसे लोग काशी में देखे जाते हैं, हरिद्वार में देखे जाते हैं और जहां तहां, तो ये लोग किसी व्यक्ति से प्रेम करना उसको बहुत बुरा मानते हैं, अपने चित्त को बिल्कुल निर्वासन कर लेना, वासनाहीन, जहां तक रूप का स्मरण आता है और किसी से संबंध का, इन सबको भी अनित्य मानते हैं, प्राकृत मानते हैं। अतः किसी लड़के में आसक्त होना या लड़के का किसी लड़की में आसक्त होना, किसी स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, और ये हम हमारा, मैं मेरा, मैं ये हूं, ये मेरा है, ये है, ये सब पाखंड है। बड़े बड़े सन्यासी ज्ञानी यही सोचते हैं, किसी रूप के चक्कर में क्या पड़ना है, निर्विशेष निराकार में ज्योति स्वरूप में मन लगाओ। और वास्तव में सांसारिक दृष्टि से केवल देखा जाए तो इनका विचार उन्नत है, लेकिन अध्यात्म के माने में ये उन्नत विचार नहीं है। ठीक है, प्राकृत रूप में मन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अप्राकृत रूप भगवान कृष्ण का जो रूप है उसमें मन का अभिनिवेश होना ही चाहिए, वही परम फल है। तो रत्नाकर जी एक प्रकार से इन निर्विशेषवादियों पर, ब्रह्मज्ञानियों पर ये बात कह रहे हैं, ज्ञान एक सूखे और दाहक सूर्य की तरह है जो हृदय को सूखा बना देता है। कोई प्रेम नहीं, कभी किसी की याद करके रोना नहीं, और खासकर भगवान की भी याद करके, भगवान का गुण गा करके कभी रुलाई नहीं, कहीं रोमांच नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हृदय सूख गया है। यह कहते कहते कि हम ही ब्रह्म हैं, सो हम वह मैं हूं, तो मैं हो तो इस दशा में क्यों पड़े हो, वही तुम हो तो इस दशा में क्यों पड़े हो। आज भी रटते रहते हैं, आप सुन सकते हैं कहीं कहीं, सो हम तो सह का अर्थ है, ये वेद का वाक्य है, सह माने वह, अर्थात जीवात्मा मैं हूं, उसके पहले जीवात्मा का वर्णन है, मैं भी वह हूं, ये अर्थ है, और भगवान का भी वर्णन है, भगवान चिन्मय है, हम भी चिन्मय हैं, जीव हैं, हम भी नहीं मरेंगे, हम भी नहीं दुखी होंगे, केवल शरीर बदलेगा, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो आत्मा का ऐसा वर्णन करके ऋषि कहता है कि सह अहम मैं वह हूं, सो अहम अयम न अहम, ये मैं देह नहीं हूं। जो सामने हमारी स्थिति है, देह को जो लोग मैं कहते हैं, उनका निषेध किया जा रहा है, मैं देह नहीं हूं, सोहम मैं इसके भीतर रहने वाला जीवात्मा आत्मा हूं शुद्ध, ये अर्थ है। लेकिन सोहम पढ़ पढ़ करके कुछ लोग ये सोचते हैं वह मैं हूं, अर्थात मैं ही भगवान हूं, सह अहम मैं वह वही हूं। एक व्यक्ति हमसे एक बार पूछा, वो कबीरपंथी था, तो हमारे मंदिर में आया था गुलरा में, पूछा आप खास हैं कि दास हैं। खास हैं हम तो समझ रहे थे, लेकिन पूछे मैंने खास माने, खास माने मतलब आप भगवान हैं कि भगवान के दास हैं। मैं दासों के दासों का दास हूं, मैं डायरेक्ट दास भी नहीं हूं, लाखों पीढ़ी नीचे का दास हूं, दास बनना चाहता हूं। तो लेकिन ये तो अज्ञान है, ईश्वर होकर के आप अपने कोई दास कहें, इतना ही नीच अपने को हीन कहें, तो ठीक नहीं। जो समझाने लगे, हम लोग अपने ढंग से समझाने लगे गीता के वाक्य के द्वारा, वो कुछ भी नहीं समझ रहा था, एकदम नहीं समझ रहा था, तब हम चुप हो गए, हम कहे कि इससे बोलना बेकार है, हम तो फंस गए। अब श्याम सुंदर दास पढ़े समझाने पर तो वो अब इनकी बोली को बंद करने लगा, कुछ भी कहते थे सुनता ही नहीं था, बोलता रहता था। तब ये कहे पहले आप 15 मिनट हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए। तो वो कहता था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं पहले कीर्तन कीजिए, कीर्तन करेंगे तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तब कृष्ण को समझेंगे। वो मान ही नहीं रहा था, वो बहस करता था। तो मैं कहा ना कि 15 मिनट पहले कीर्तन कीजिए, कीर्तन के पहले आप कुछ नहीं समझेंगे। तो वो क्या करे, अब वो 15 मिनट कीर्तन किया, करताल पकड़ाया गया उसको और बोला हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के 15 मिनट, घड़ी देखी जा रही थी। तो करके और फिर बोलना चालू किया तो सब समय दस के आपके लिए कम पड़ गया कीर्तन, अभी फिर 15 मिनट किया। 15 मिनट कीजिए, वो सचमुच को 15 मिनट और कीर्तन किया और इसके बाद बहस करना छोड़ दिया। तो भोजन का टाइम आ गया, आरती होने लगी, आरती के बाद भोजन हुआ, तो आरती में भी खड़ा रहा, तो खड़ा था और नाम भी गा रहा था, मुझे कि अच्छा दवाई दिया। और इसके बाद बहस नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया होगा हम लोगों की बात, लेकिन अब बहस नहीं किया। वो कुछ बहस करना चाहता था, बोलता तो अभी अभी आपकी ऐसे जबरदस्ती कर अब जा, नहीं जबरदस्ती नहीं है ये, आप दवा दिए। वो आते ही रहते थे हम लोगों के मंदिर पर, लेकिन अब बहुत वर्षों से भेंट नहीं है। तो जो कट्टर मायावादी हैं और निर्विशेषवादी, उन लोगों को एक बार ब्रज में जाना चाहिए, सावन में चाहे कार्तिक में या फागुन में। फागुन में जाएंगे जब नख से सिख तक रंग में बोरे जाएंगे, तब ध्यान होगा कि वो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वैसे तो जहां तहां बहुत बहस, बस ध्यान करो ऐसे लोग बोलते हैं, ध्यान करो। अब जप आदि टाइम से नहीं करना, नहीं आरती में भाग लेना है, भगवान को प्रणाम नहीं करना है, बस टाइमिंग टाइम से काम क्या करना है, चाय पी लेना है, टाइम से चाय पी लेना, और कुछ आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना है, बस यही साधना है। लेकिन वास्तविक तो साधना है गाना, भगवान का जस गाना, गीत गाना, नाम गाना और नाचना, ये धर्म है। कली काले धर्म नाम संकीर्तन सार, कलयुग में एक ही धर्म है, भगवान के नाम का कीर्तन, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी से जीव ठीक होंगे। वैसे ऐसे बहुत दवाई है, मान लीजिए किसी फार्मेसी में बहुत दवा हो लेकिन सबका डेट एक्सपायर कर गया हो, कई साल बीत गया हो, तो दवा बेकार होती है। जिसका डेट अभी लिखा हुआ कि इस डेट को दिया जाए, इस डेट पर दिया जाएगा, तो उसको खाने से फायदा होता है। अब योग, ज्ञान, कर्म, दान, तप, उपवास, ये सब का फल एक्सपायर कर गया, ये कहीं दवाई काम करेगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उद्धव जी जब गोकुल के गांव की गली में पैर रखे तो उस भूमि के स्पर्श से ही भाव बदलने लगा, जैसे बिजली का करंट छुए आदमी तो तत्काल शरीर में स्पंदन होता है, दूसरा ही स्थिति होती है। वैसे ब्रज भूमि में प्रवेश करने से ही प्रेम समझ में आता है, क्या प्रेम है। और उस भूमि का प्रभाव आज भी है, महानास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो, कर्कश दिमाग वाला, बुद्धि वाला, हृदय सूखा, लेकिन वह भी यदि कृष्ण बलराम मंदिर में शाम की आरती देखता है तो एक और ही भाव भर जाता है। ऐसे नास्तिक भी नाचने लगते हैं, कीर्तन इतना अच्छा होता है, भक्त लोग नाचते रहते हैं तो वो भी कम से कम बांह ऊपर करना इस तरह से करने लगता है। ये बातें देखी जाती है, रोज रोज ये सब आरती होती है, रोज नया उत्सव। जब बांके बिहारी जी को देखे, उसमें कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो देखना नहीं चाहेगा, देखेगा, बीच बीच में पर्दा आ जाता है तो इसे और उत्सुकता बढ़ती है, सभी लोग देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये है भक्ति, यह नहीं कि चुपचाप मुर्दा की तरह बैठ जाओ, सो जाओ, कुछ बोलो नहीं। नहीं बोलना ये मृतक का लक्षण है या गूंगा का लक्षण, भगवान का नाम नहीं बोला, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं किया, तो ये जीवन सब बेकार है, वास्तव में किसी काम का नहीं। ये उद्धव जी ऐसे नहीं थे कि सूखे हृदय वाले, सूखे हृदय वाले इस समय मिलते हैं ज्यादा लोग, और खास करके साधु भेष में सूखे हृदय वाले, उनके लिए रत्नाकर जी कहते हैं, ज्ञान मार तंड के सुखाए मन मानस को, सरस सुहाए घनश्याम करीबे लगे। घनश्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण हृदय में छाने लगते हैं वृंदावन जाने पर, और घनश्याम छाएगा बरसेगा तो सरस हो ही जाएगा हृदय। इन्हें मायावादियों का बहुत प्रभाव रहता है, और तो लोग भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहते, इतना अभिमान होता है क्या। एक बार मैं पटना गया था तो लालू प्रसाद जिसे भेंट हुई थी, तो हम लोगों को दीपक जलाना था, उनको बुलाया, वही बुलाए थे तो उनको दीपक जलाना था, तो आए वे अपनी पत्नी के साथ, दीपक जलाए। दीपक जलाने के बाद मैं कहा प्रणाम करना चाहिए, बहुत संकोच से मैं कहा प्रणाम करना चाहिए भगवान को, हाँ ऐसे हाथ जोड़े खड़े खड़े, तो ऐसे प्रणाम नहीं, मस्तक जमीन पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो बोले ठीक बात, ठीक है, जमीन पर मस्तक दिए तो खड़े हुए, खड़े हुए तो मैं कहा कि कतना दंड बैठकी रहा कहले हो खाओ, एगो दंड करे में का बीतता है, दंडवत करी हाथ आगे करके पैर नीचे करके, तो ये कहते ये भक्ति में भी बहुत मेहनत बा। नहीं तो आनंद है। इसके बाद उन्होंने प्रवचन किया, बहुत प्रशंसा की इस काम की और प्रभुपाद जी की, और लगभग 10 मिनट बोले होंगे, बहुत प्रशंसा किए, कहे कि सच्ची भक्ति इस काम के लोग करते हैं, प्रभुपाद ने प्रचार किया बहुत अच्छा किया। तो उनका उनकी बात याद आती है, भक्ति में भी बहुत मेहनत बा, भोजपुरी ही बोलते हैं। लेकिन वो भी भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण से उनको प्रेम है, ये हमने पर्सनल देखा है, क्योंकि उनका प्रेम एक बार और प्रकट हुआ जब भी वृंदावन में आए थे, मथुरा में आए थे, तो रेल मंत्री हैं तो अब वहां पर बड़े बड़े ऑफिसर सब जुटने लगे आगरा से मथुरा से, कौन कौन कमिश्नर डीएम और कौन कौन। तो हमसे भेंट जब हुई तो वे कहते हैं, मैं पूछा कि सुनने के लिए वो मथुरा गई रही, तो हाँ भगवान के दर्शन करे गई रहे, द्वारकाधीश जी के दर्शन करे गई रहे, लेकिन है डीएम सीएम सब हमारे दर्शन कर जावत है। इतना भीड़ हम जाते नहीं भगवान के दर्शन करें, तो हमरा के घेर के कोनो रिकॉर्डर लगौले बा है लगौले बा, हमारे तो एकदम अकबक जीव हो गई जी, भगनी हम भगनी बरसा में बाबा के पास गई, रमेश बाबा के बरसाने में शांति मिला। हम वृंदावन ना आ सकने बांके बिहारी जी के दर्शन करें, वही कर हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने नहीं आ पाए, इतना घेरे चारों ओर कि अब परिवार था उससे हमारा संग छूट गया और सब लोगों किधर गए ये पता ही नहीं लगता, इतना ट्रैफिक जाम ये हुआ, बल्कि गाली देकर के कहे कि साला हमारे के देखे आई बात, हम भगवान के देखे आई बात देखे ना देता, मंदिर में गई मुश्किल हो गई, दर्शन भैल किनारे ना भैल जी कैसे हो। भगवान के देखे आई बारी हमारे के देखे अपने से कहे थे, हमको भी देखने आए क्या ललुआ आया है, ललुआ आया यही कहते होंगे। इस तरह से उनके वाणी से पता लगा कि वे भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और चाहे जो कुछ हो राजनीति अलग चीज है, लेकिन भगवान से संबंध है रखते हैं, वे भगवान के प्रति भक्ति है। और एक और बड़ा प्रमाण है कि संसद में उन्होंने आवाज उठाया कि ब्रजभूमि में जो पहाड़ हैं उन्हें नहीं टूटना चाहिए, वहां खनन नहीं होना चाहिए। तो एक और सांसद हैं देवेंद्र यादव, तो उन्होंने इनकी प्रेरणा से कितना सांसद एकत्र किए थे, 60 की 62 के 58 या 60 सांसदों को इकट्ठा किए, और तब सबने एक स्वर से कहा कि हाँ ब्रज में जो भगवान की लीला स्थली है, जो पहाड़ है जहां गाय चराए हैं, ये सब परम तीर्थ है, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। हमसे लालू प्रसाद जी ने कहा था कि मैं जा करके संसद में इस बात को उठाऊंगा, पटना जब मैं गया था तो कार में साथ में बैठे थे, तो उन्होंने कहा, तो मैं कहा कि हाँ ये बहुत पवित्र काम बरुआ पर जोर देवे के चाहिए, तो वो किए। तो बाबा का रमेश बाबा का भी आशीर्वाद उनको मिला था, वे भी बहुत खुश थे, इनके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे। प्रथम बार एक व्यक्ति कोई भगवान कृष्ण के विषय में इतना अनुकूल बोला, तो ये बात कैसे आ गई। तो ज्ञानी लोग जो इसमें तो भगवान को जानते हैं, बल्कि भगवान ही हो गए तो भगवान को कैसे प्रणाम करें। सन्यासी लोग बड़े ही भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं, दुनिया पूजती है ये सन्यासी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का जीरो भी नहीं है। उसी पर लपना कर दिया, आक्षेप कर रहे ज्ञान मार्तंड के सिखाए सुखाए मन मानस सरस सुहाए घनश्याम करने लगे। जो श्री कृष्ण अन्य स्थान से समझ में नहीं आते हैं, वो ब्रजमंडल में जाने पर वहां से समझ में आ जाते हैं। मथुरा में रह करके भी उद्धव जी श्री कृष्ण को नहीं समझे, कहां है दुमार लेकिन ब्रज में जाने पर समझ गए। तो उद्धव जी आए हैं, इसकी खबर धीरे धीरे मिलने लगी ब्रज के गांव में, तो श्री गोपिया आती है जगह जगह से, इसका वर्णन वे करते हैं। पृष्ठ 29 पर 38 नंबर का श्लोक है।
धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की, धाई धाम धाम ते
धाम धाम से, धाम मतलब अपने अपने घर से गांव से दौड़ करके आए। कई गांव हैं गोपियों के जहां उनका विवाह हुआ था, कहीं कहीं पर उनका नैहर था, तो जहां तहां से दौड़ करके आने लगे। आवाज सुनी उद्धव की, उद्धव का आगमन सुन करके प्रियतम के सखा आए हैं, तो आने लगी। बाम बाम लाख अभिलाखन ही शुभुए रहे। बाम बाम से प्रत्येक ब्रज स्त्री आने लगी और मन में लाख अभिलाषा भर करके कि ये पूछूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, कैसे होंगे प्रियतम, कब आएंगे, कब आएंगे, हमारी चर्चा किए कि नहीं, हमारी चर्चा किए कि नहीं। तो वही अभिलाषा मन में लेकर के आ रहे हैं।
धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की, धाई धाम बाम बाम लाख अभी लाखनी शोभ रही।
इसमें भय रही का अर्थ है कि भर गई थी और चल रही थी, अभिलाषा उनको तेज चला रही थी।
कह रात न कर पैबिकल बिलोकी तीन है, कह रात न सकल करे जो थामी आपन पैर नहीं। लेखी निज भाग लेख रेख तीन आनन की, लेखी जानन की ताहिया तुरी समान में रही। आसरो की सासरो की पूछ न हो, लासरो की आसर मूर्ति निरास की से आस भरी जय रही।
धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की, उद्धव जी का आगमन सुन करके गोपियां अपने अपने घर से दौड़ दौड़ कर आई। सबके मन में कृष्ण विषय अनेक अभिलाषाएं थीं, वे अभिलाषाओं से तेज आ रही थी या भरी हुई थी। लेकिन जब उद्धव जी को देखा उन लोगों ने, तो उद्धव जी खिन्न थे। नंद बाबा और जसोदा जी को सुख नहीं दे पाए, समझा नहीं पाए, तो वे सुखी नहीं थे और गोपियों की दशा भी देख करके वे सुखी नहीं थे। कहे रत्नाकर पर विकल बिलोकी तिन्हें, तिन्हें मैंने उद्धव जी को देख करके कि ये विकल हैं, दुखी हैं, तब उनको ये विश्वास हो गया कि लगता है कि प्रियतम के आने की संभावना नहीं है, उद्धव जी उदास है, तो सकल करेजो थामी आपनो पहलोए रही, अपने कलेजे को थाम करके पकड़ करके अपने विषय में वे खेद कर रही थी, रो रही थी, और उद्धव जी के मुख पर देख रही थी, उद्धव जी के मुख पर देख रही थी। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि लेखी निज भाग लेख रेख तीन आनन के, वे उद्धव जी के मुख पर देख रही थी और अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही थी। अपने भाग्य की रेखा आदमी अपने चेहरे में चाहे हाथ में पढ़ता है, लेकिन गोपियां उद्धव जी के चेहरे पर अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही थी। इसका मतलब है कि देख रही थी क्या मुद्रा है, क्या श्याम सुंदर आएंगे हमारे पास, ये शुभ रेखा मानी जाएगी, शुभ रेखा। तो उद्धव जी के चेहरे पर देख रही थी और अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही थी। जानो न कि ताही अतुलिस मन मोए रही, अपने मन में समाहित करके हृदय को, और इस तरह से उद्धव जी का चेहरा केवल देख रही थी, ये भाव है। आंस रोकी सांस रोकी पूछा न हुलास रोकी, कुछ देर के लिए गोपियां अपने आंसुओं को रोक ली और सांस भी रोक लिया और पूछने की लालसा भी रोक लिया, सब रोक करके निराशा की मूर्ति जैसी भी खड़ी की खड़ी रह गई। उद्धव जी से पूछ रहे हैं, पूछने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। जानी मस्तम जदुपते जदुपते पार्षदम संपागत, जदुपते पार्षदम, हम जानती हैं बिना पूछे कहती हैं, बिना कुछ बताए अपना परिचय उद्धव जी से कहती हैं, हम जानती हैं, मतलब आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है और प्रश्न कोई और क्या पूछे, जानती ही हैं कि आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, कौन भेजा है, जदुपति भेजे हैं जो जादुओं के राजा बन गए हैं इस समय मथुरा, वो भेजे हैं। अब तो उनको गोपीपति कहलाने में लज्जा भी होती होगी, अगर कोई कह दे कि ग्वाले हैं गाय चराए हैं तो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। जदुपति शब्द का अर्थ जादुओं के पालक, हम जदुपति के पार्षद हैं ब्रजपति के नहीं, ये मतलब है। अब तो उनको कोई कहता होगा गोपाल तो लज्जा से मुख नीचे कर लेते होंगे, कहा हम राजा हैं और हमको गोपाल कहा जा रहा है, गोपाल माने गऊओं का पालन करने वाला, गाय चराने वाला। इसमें यही भाव है कि और हम जानती हैं, जानती हैं इसका मतलब कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब जानती हैं, अब जैसे आए हैं मथुरा से वैसे जाइए, हमें बात नहीं करना है। जदुपति के पार्षद है ना, और जदुपति ने आपको भेजा है, और भेजा है तो ये भी हमको पता हो गया है कि क्यों भेजा है, माता पिता के लिए भेजा है, अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्म है, अन्यथा इस पूरे गो ब्रज में उनके स्मरण का विषय कोई हो सकता है, हम नहीं जानते, देख ही नहीं रहे हैं, किसकी याद करेंगे कोई याद करने योग्य है तो होगा तब न याद करेंगे। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्म है, प्रेम की यही भाषा है, इस ब्रज में माता पिता के अलावा कोई और स्मरणीय है, स्मरण कभी किए होंगे मथुरा में एक मिनट भी, ये हम नहीं देख रहे हैं। स्नेहानु बंधु बंधु नाम मुरे रपि सुदुस्ते। अरे वो तो सन्यासी नहीं है, मुनि नहीं है, एक गोप है, तो वे केवल नहीं माता पिता से संबंध रखेंगे, सबको भूल गए। माता पिता को नहीं भूले होंगे, माता पिता की याद आई इसलिए आपको भेज दी। परिवार के लोगों से जो संबंध है, अपने देह के संबंध ही, वो मुनियों के लिए भी सुदुस्त्य, मुनि लोग भी नहीं छोड़ पाते हैं, सब छोड़ करके वन में जाते हैं मुनि लोग। मुनि का अर्थ है मननशील, जो पूरा ज्ञानी है, सब बात समझते हैं, उनके द्वारा भी बंधुओं का स्नेह छोड़ना कठिन है। कहीं भी जाएं, वृंदावन में जाएं, कहीं जाएं, पर परिवार के लोगों से संबंध रखना रखते हैं मुनि लोग भी, है ना। मुनि लोग भी भूल नहीं पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, मुनि रपि सुदुस्ते जा, मुनियों के लिए भी परिवार का संबंध छोड़ देना कठिन है। अपने फैमिली की याद किए हैं, भेजे हैं, हो सकता है मथुरा से कई स्वर्ण मुद्रा भी भेजे होंगे, क्या क्या रथ आया तो रथ पर क्या क्या लाद करके आया था, हम क्या जाने, हमको क्या मतलब है इससे, किसी की याद कर। अन्य स्वर्थ कृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम पुंभी स्त्रीसु कृता जदवत सुमनस्य सकल। और परिवार के अलावा अन्य लोगों से जो प्रेम किया जाता है वो अर्थ कृता मैत्री होती है, कोई खास मतलब होता है, अपना मतलब साधने के लिए प्रेम किया जाता है। और वो भी जब तक स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैत्री की का नाटक ही होता है, सच्चा प्रेम नहीं किया जाता है, और जो भी प्रेम होता है दिखावा होता है। जावद अर्थ विडम्बन, जब तक अर्थ पूरा नहीं हुआ तब तक दिखावा होता है, अर्थ पूरा हो गया तो बस चल गए। तो हम लोग तो उनके परिवार की नहीं है, हमारे साथ उनका विवाह भी नहीं हुआ है, तो हमारी क्यों याद करेंगे। तो भगवान रो रहे हैं, उद्धव जी को भेजे हैं कि गोपियों को ये बात कहिएगा वो कहिएगा, वो कहते नहीं कुछ भी सुनने, संदेश सुनने की जरूरत नहीं, अब जैसे संदेश लेकर के आए थे वैसे ही लेकर मथुरा चले जाएंगे, हमको नहीं सुनना है, हम सब जानते ही हैं, सुनना क्या है। न आपसे हमको मतलब है, न आपके स्वामी से कोई मतलब है। लगता है कि भूल करके भेज दिए, आपको कहीं और जाने के लिए कहे होंगे, आप आ गए हमारी गोष्ठी में। नाटक में कभी कभी लोग बोलते हैं आपको जाना कहीं और था, भूल कर आ गए, क्या है ऐसे बोलते हैं। श्री गोपी जनों का प्रेम ऐसा है जिसको समझ पाना बड़े बड़े लोगों के लिए मुश्किल है। उद्धव जी इसको समझे, बाद में समझे, तब गोपियों के चरण की वंदना करने लगे, चरण धूलि में लौटने लगे। ये पहला वाक्य से प्रारंभिक वाक्य है, इसकी विशद व्याख्या है। बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है। हम तो रत्नाकर जी का पद खोज रहे थे, वो इसमें है ही नहीं लगता है, भूल से छूट गया है। जिस पद में यह है कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब है कहीं। वो पद इस तरह से है, भेजे माना भावन के उद्धव के आवन की, भेजे माना भावन के उद्धव के आवन की, सुधे ब्रज गावनी में पावन जब लगी। एक है रतन कर गुवाली न की झर झर, कह रतन कर दौर दौर नंद पौर आवन थव लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पै, उझकी पद कंजनी के पंजनी पै, पेखी पेखी पाती छाती छोहना छव लगी। पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छव लगी। हम को लिखो है कहा, 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 कहन सब लगी। प्रिय श्याम सुंदर के भेजे हुए उद्धव के आने की सूचना जब मिलने लगे गांव गांव में, तो रत्नाकर कवि कहते हैं कि झुंड की झुंड ग्वालिने गोपियां नंद बाबा के पौर पर आने लगी, और उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर। उद्धव जी ऐसे पत्र लेकर के खड़े हैं, पत्र बांचना चाहते हैं, तो गोपियां उसके पहले ही कहती हैं, उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर, अपने चरण कमल के पंजे पर उझक उझक करके देख रही हैं। चारों ओर उद्धव जी को घेरी हैं, उद्धव जी बीच में हैं, देख रही हैं पत्र में कैसा पत्र है। और इसके बाद प्रत्येक के मुख से यही निकल रहा है कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहो ना सब लगे कि प्रियतम श्याम सुंदर मेरे विषय में क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं। श्री राधा रानी आदि सभी गोपियां कहने लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगे हमको क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं, ये सब कहने लगे। यही स्वाभाविक वर्णन है। इस तरह से कोई नया अखबार लेकर के खड़ा होता है तो लोग देखने लगते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा, और तुरंत पढ़ करके पूरा किया तो दूसरे लोग उसको लेकर के पढ़ने लगते है ना, साधु भी लेकर के पढ़ने लगते। भागवत पढ़े नहीं, गीता पढ़े नहीं, और कौओं के तीर्थ में बैठ गए। सब काक तीर्थ है, कौए जुटते हैं, सब क्या हुआ काव 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 काव। ये सब कौओं का बिजनेस है, गंदा चीज सब पढ़ते जाना। वास्तव में जो हंस होता है वो श्रीमद् भागवत पढ़ता है, तब बायसम तीर्थम उसंति। नारद जी कहते हैं कि जिस ग्रंथ में भगवान के रूप लीला गुण आदि की चर्चा नहीं है, ये सब वैदिक ग्रंथ भी जिनमें भगवान के रूप गुण की चर्चा नहीं है तो बायस तीर्थ है, कौओं का मेला। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कौए कहां जुटते हैं, जहां जुटते हैं उनको बायस तीर्थ कहते हैं। कौए कहां जुटते हैं, कौए कचड़ा के जगह पर जुटते हैं, वो खोजते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है, अपनी चोंच से खोजते रहते हैं वहां क्या चीज है। मनुष्य का खंखार है, बच्चों का मल है, गंदा चीज है, और उसी को खाते हैं। वैसे ही जो कौवे हैं उनको क्या चीज खाने को चाहिए, अखबार चाहिए। पहले अखबार में कहां क्या मर्डर हुआ, क्या क्या चोरी हुई, ये सब पढ़ना, किसकी हत्या हुई, यही सब है ना। और कौन महाझूठा पटना में, दिल्ली में, लखनऊ में क्या बोला, सुखदेव गोस्वामी की बात नहीं पढ़ते हैं, श्री भगवान वाच भगवान की बात नहीं पढ़ते हैं, और वही सब पढ़ते हैं, यह हुआ च यह हुआ च यह हुआ च ये बोला, सब झूठा। और कौओं का मेला ऐसे ही जगह लगता है, सवेरे सवेरे ये सब न्यूज पेपर अभी पढ़ना है, अपने जीवन को अधोगति में डालना है। वास्तव भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। ये सब जो पढ़े तो उसको हंस कहा गया है, राजहंस या परमहंस। और जो भगवत भावनाहीन, भगवान की कथा से हीन बातें पढ़ता है उसको बहुत बुरा कहा गया है। शास्त्रकार उसको पहले तो कह रहे हैं कि वो बायस है, कौआ है, बायस मैंने कौआ है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं खलों के लिए कि मैं अपनी दिश की निहोरा तैन निजोर न लाओ भोरा। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि जो राम में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो कविता का गुण केवल देखना चाहते हैं, तो हमारे कविता में कोई गुण नहीं है, एक ही गुण है कि इसमें भगवान का नाम है, भगवान का गुण है। लेकिन फिर भी हमारे रामायण की जो निंदा करेंगे उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं निंदा कोई चीज नहीं है, मैं भगवान का गुण गाया हूं। ये कोई ना कहे कि ये रस नहीं है, ये छंद ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो सबके बाद वे कहते हैं अब मैं अपनी दिश की निहोरा, मैं तो अपनी ओर से निहोरा किया कि आप लोग इसको मत पढ़िएगा, इसमें दोष भरा हुआ है, आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन वे नहीं मानेंगे, पढ़ेंगे और निंदा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहते हैं वे पढ़ेंगे और जरूर निंदा करेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, बायस पली हैं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कब हम की कागा। यदि किसी कौवा को खूब अनुराग से पोसा जाए, उसको खीर खिलाया जाए, दूध खिलाया जाए, लेकिन वो छूटेगा, उसको गंदा खाने का अवसर आएगा तो खाएगा ही। कहीं मरे हुए पशु का मांस खाता है और कहीं मल खाता है, यही खाता रहता है ना। यदि सवेरे सवेरे कोई बच्चा भोजन मांगता है तो गांव में स्त्रियां कहती हैं अभी कौआ गुह ना खैला तले तू लगला खाए। इसका मतलब कौए का आहार है मल खाना। सबसे पहले वो आकर के जुटते हैं कहां पर ये चीज है, अभी कौआ खाया ही नहीं अपना भोजन है, तब तुमको भूख लग गई, मांग रहे हो, है ना? बात सुने है ना? कोई कहे अब, कोई भागवत पढ़े गीता पढ़े तो लोग कहेंगे, अभी कौआ लोग अखबार भी नहीं पढ़े और तुम लगे पढ़ने, तो उनको पढ़ने दो मॉर्निंग न्यूज, टीवी पढ़ने, टीवी देखने दो, है ना? ये बहुत कितना दुर्दशा है आदमी की। आखिर अपनी बुद्धि कैसे फ्रेश होगी जब हम वही कचरा पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे आशा करेंगे कि हमारा जीवन भव्य होगा, हम भगवान को समझेंगे? भगवान को समझने के लिए कुछ नियम है, कम से कम सवेरे उनको प्रणाम करना, मंदिर में आना, या अपने घर में जो फोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, उसको प्रणाम करना। तो जीवन में एक शुभ है, ज्ञान का उदय होता है, भगवान से संपर्क होता है। इस मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि नहीं हम आपसे कुछ भी पढ़े, कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, सुनने से भगवान को नहीं समझ पाएंगे और इस तरह से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवान के विषय में पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी नहीं जानता है तो सुने, सुनना भी नहीं, सुनने का भी समय नहीं है तो भगवान का नाम जपे, ये तो समय है ना? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जीवन मिला है इसको शुद्ध रखने के लिए और भगवान से जोड़ने के लिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है, समय क्यों नहीं मिलता है? कथा के लिए अगर अनिवार्य आदमी मान भावना कर ले कि हमें सुनना ही है तो समय क्यों नहीं मिलेगा? समय कुछ लोगों को समय मिला हुआ है, अमेरिका से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, इतने दूर दूर से लोग आए हैं, तो आखिर समय निकाले ना। ऐसा नहीं है कि सब फालतू थे, उनका कोई काम धंधा नहीं था तो चलो अब समय बिताने के लिए खड़िया चल दो, ऐसा नहीं है। अर्जेंट काम में है, लेकिन सभी अर्जेंट काम का लिस्ट बनाया जाए तो सबसे टॉप पर नंबर रहेगा कथा सुनना, सबसे अर्जेंट यह है। तो इस तरह से बड़े अनुराग के साथ अपना भाग्य मान करके भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा।